भाई नेवल, खुदावंद आपको बरकत दे। आज रात कलीसिया में वापिस होना मेरे लिए खुशी की बात है। मेरे गले की आवाज़ थोड़ी बारी और खुरखुरी है। आज सुबह का पैगाम थोड़ा तवील हो गया था और मैं यकीनन खुश हुआ, अगरचे ऐसा हुआ था, और उस लम्हे ये पैगाम आ रहा था। मैं खुद भी इससे लुत्फंदोज हो रहा था और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी लुत्फंदोज हो रहे होंगे। अब इसे भूल मत जाना, इसे हमेशा याद रखना, क्योंकि यही वो चीजें हैं जो मसीह के खादम को तामीर करती हैं। देखें, पहले ईमान, फिर नेकी, और अब याद रखें, रूल कुस खुदा की इस इमारत में चोटी का पत्थर नहीं रख सकता जब तक ये सारी चीजें रूल कुस के वसीले से ना हों। कोई मसला नहीं कि आप क्या करते हैं, समझे? और यही चीजें हैं जो मसीह के बदन को तैयार करती हैं। देखें, जो चीजें तैयार करती हैं, अब इन्हें भूल मत जाना। जैसा कि यहाँ पहले आपका ईमान है, नेकी, मार्फत और इसी तरह और हैं, जिनका इसमें इजाफा होना है जब तक कि मसीह का पूरा बदन तैयार ना हो जाए। तब रूल कुछ इसके ऊपर आता है और इस पर मोहर कर देता है, जैसे कि ये एक ही बदन है। ये चीजें जरूर होनी चाहिए। इसलिए यीशु ने कहा, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। देखें, फलों से, जब तक आप इन चीजों को अपने अंदर नहीं रखते तब तक आप फल नहीं ला सकते। और फिर जब तक ये सारी चीजें दुनियादारी और बेदीनी की जगह नहीं ले लेती, और इसी तरह मजीद और चीजें, और फिर जब ये सारी बेइत्कादी बाहर निकल जाती है, फिर सारी दुनियादारी भी बाहर निकल जाती है, तब वहाँ कुछ नहीं होता, लेकिन सिर्फ मसीह में एक नया मखलूक होता है। और फिर इफिसियों 4:30 कहती है, खुदा के पाक रूह को रंजीदा न करो जिससे तुम पर मखलिसी के दिन के लिए मोहर की गई है, जो खुदा की बादशाही के लिए मोहर की गई है। अब इसे मत भूल जाना। अब इस बात को जहन में रखें, पहले ये सारी चीजें लें, तब रूल कुछ ही मोहर है। ये वो चोटी है जो बदन में हम पर मोहर बंद करती है। ये ठीक है। अब हमें एक दरख्वास्त मौसूल हुई है जो बहन लिटल की तरफ से शिकागो से है। बहन लिटल के शोहर के साथ कार चलाते हुए हादसा हुआ और वो मौत के करीब पहुंच चुके हैं। और हमारी छोटी बहन एडिथ राइट, जैसा कि हम जानते हैं, वो बहुत बुरी हालत में आज रात अपने घर में है, और उन्होंने चाहा कि कलीसिया में इसका ऐलान कर दिया जाए ताकि हम सब मिलकर इस दरख्वास्त के लिए दुआ करें। और अब आए, हम थोड़ी देर के लिए अपने सरों को झुकाते हैं। हमारे बेशकीमत आसमानी बाप, हम खुदा के तख्त के चौगिर्द ईमान के साथ जमा होते हैं और हम इन दरख्वास्तों के लिए इलाही शिफा मांगते हैं। भाई लिटल के लिए, जो कार एक्सीडेंट में अब मौत के करीब हैं, खुदा इस भाई की मदद कर। खुदावंद, अब ऐसा होने दे कि तेरा रूल कुछ उसके पास जाए और वो दोबारा हमारे साथ यहाँ खड़ा हो जाए। और छोटी बहन एडिथ राइट को, जो कि वहाँ है, मैं दुआ करता हूँ, खुदा आज रात रूल कुछ भी उस बहन के बिस्तर के पास जाए और दोबारा उसको सेहत याब कर दे। ऐ बाप, ये बख्श दे, क्योंकि तूने इन चीजों का वादा किया है और हम इन वादों पर ईमान रखते हैं। और जैसे कि आज सुबह हम सोच रहे थे कि फासले आपके सामने कोई अहमियत नहीं रखते, खुदावन तेरे लिए जैसे दुनिया का एक हिस्सा अजीम है, वैसे ही दूसरा हिस्सा भी अजीम है, क्योंकि तू हर जगह मौजूद है और तू कादरे मुतलिक है और तू लामहदूद है। और हम दुआ करते हैं ए बाप कि तू ये सारी दरख्वास्तें यीशु मसीह के नाम में मंजूर करेगा, आमीन। आज रात दोबारा यहाँ होना बड़ी ही खुशी की बात है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि गर्मी है और मुसलसल तीन इबादत हैं, और ये मैं जानता हूँ कि आप में से ज्यादातर को अब और सुबह के दरमियान 500 मील गाड़ी चलानी पड़ती है, और कल के बाद मुझे 1400 मील गाड़ी चलानी पड़ेगी। इसलिए बस मैं भरोसा करता हूँ कि ये आप सबके लिए एक अजीम वक्त है, और मेरे लिए भी ये अजीम वक्त है कि मैं आपके साथ मुलाकात कर सका। एक और बात जिसके लिए हमें दरख्वास्त मौसूल हुई है, बहुत सारे लोग वापस चले गए हैं, जगह ना मिलने की वजह से। हम गिरजा घरों में लोगों को बहुत ज्यादा दबाकर नहीं बिठा सकते, क्योंकि आग बुझाने वाला अदारा इसके लिए खड़ा नहीं होगा। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि इससे थोड़ा बड़ा गिरजाघर ले लें, इसलिए कि जब हम अंदर आएं, ताकि हमारे पास लोगों को बिठाने के लिए जगह हो। और अब किसी भी वक्त हमेशा आपको इस टैबरनेकल में खुशामदीद कहते हैं। हम यहाँ कोई अकीदा नहीं रखते लेकिन सिर्फ मसीह, कोई कानून नहीं रखते लेकिन सिर्फ मोहब्बत, कोई किताब नहीं रखते लेकिन सिर्फ बाइबल। और इसी तरह हमारा पासवान भाई आर्मन नेवल है, और हमारे पास मुख्तलिफ तंजीमों से लोग आकर इस टैबरनेकल में जमा होते हैं, जैसे कि ये एक गैर तंजीमी टैबरनेकल है जहां आप आते हैं और खुदा की इबादत अपने जमीर के फरमान से करते हैं। हम आपको यहां पाकर बहुत खुश होते हैं, और इस तरह आप जब चाहें आ सकते हैं, हम हमेशा आपको पाकर खुश होंगे। और अब अगली बार, जैसे कि मुझे मालूम है कि मैं आपके साथ ये गिरजाघर मुकम्मल हो जाने के बाद ही मिलूंगा, और फिर मैं चाहता हूं कि सात कलीसिया जमानों के बाद हम सात मोहरों पर भी तालीम हासिल करें, और मुकाशवा की किताब में हम सात मोहरों को सीखते हैं। और अब बहुत बार यहाँ बीमार और परेशान हाल लोग आते हैं और इन इबादात के दौरान रोया के मुतल्लिक पूछते हैं, और खास तौर पर इंटरव्यू के लिए आते हैं। और अगर मैं इंटरव्यू के हवाले से बातें करता हूं, तो फिर मैं उनमें कुछ फर्क नहीं पा सकता, और आप जानते हैं इसके बाद मुझे बोलने में बड़ी दुश्वारी होती है। और हर कोई जानता है कि हमारी शिफाया इबादत में, जैसे कि मिस्टर बैक्स्टर या कोई और अक्सर मुनादी करता है, और मैं बीमारों के लिए दुआ करने आता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा थका देने वाला और पुरजोश काम होता है। कुछ लम्हात पहले मैं बीमारों के लिए दुआ कर रहा था, और तब मैं एक छोटे लड़के से मिला जिसे डॉक्टरों ने बताया कि उसकी कमर में कुछ है, और वो कुछ इस तरह से पैदा हुआ था। बाहर आते हुए मैंने देखा कि वो एक सांचे में बैठा हुआ था। उस बच्चे को तो अब इस तरह कभी माजूर नहीं रहना है, वो ठीक होने जा रहा है, यकीनन उसे ठीक होना है, समझे? ऐसा है, मैं ये जानता हूँ, देखें, मैं इसके बारे में पुरयकीन हूँ। बस हम चाहते हैं कि हमारा ईमान और भरोसा खुदा पर रहे। आप लोगों में से और खादमों में से ज्यादातर लोग मुझसे नावाकिफ हैं, और अगर मैं गलती ना करूं तो फिर ये बाइक क्रेस है, क्या ये दुरुस्त है? बाइक रेस, मैं उस अहद के लिए माफी चाहता हूं कि मैं वहां मखसूसियत पर ना पहुंच सका। शायद मैं वहां हफ्ते की इख्तितामी इबादत में पहुंच जाऊं। शायद इसे ऐसे ही बेहतर होना है, क्या ये दुरुस्त है? यहां ब्लूमिंगटन में क्या आप अच्छा कर रहे हैं? यकीनन अच्छा कर रहे हैं। मेरा अंदाजा है कि इनमें से कुछ भाई खादम हैं। क्या आप एक खादम हैं? जी जनाब, खुदावंद आपको बरकत दे। और कितने खादम इस गिरजाघर में मौजूद हैं? अपने हाथ दिखाएं। बहुत अच्छा, ये तो बड़ी शानदार बात है। हम आप खादमों को यहाँ पाकर बहुत खुश हैं। खुदा हमेशा आपको बरकत दे। अब इस तरह जल्दी करके हम बाहर निकल सकते हैं। उनमें से कुछ जॉर्जिया, टेनसी, न्यूयॉर्क और मुख्तलिफ जगह पर आज रात से जा रहे हैं। आज रात ही जाना शुरू कर देंगे। अब बड़े ही ध्यान से रोड पर गाड़ी चलाएं, और अगर आपको नींद आ जाए और सराय में जाना ना चाहें, तो गाड़ी सड़क की एक तरफ रोक दें जब तक आप चाहते हैं सो लें। यही तरीका है जो मैं करता हूं, समझे? आप जरा गाड़ी को बंद कर लें और सो लें, और जिस दौरान आप नींद के शिकंजे में हों, तो गाड़ी हरगिज ना चलाएं। ये बड़ी खतरनाक बात है, और ये याद रखें, ये सिर्फ आप ही सड़क पर नहीं हैं, आपसे आगे गाड़ी चलाने वाला साथी भी है जिसको आपने देखना है, समझे? आप जानते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, मगर आप ये नहीं जानते कि वो शख्स कहाँ जा रहा है, इसलिए आपको उस शख्स को भी मद्देनजर रखना चाहिए। इसलिए आपको उसे मद्देनजर रखते हुए यकीनन हर वक्त मोहतात रहना चाहिए। अब आज रात मेरी ख्वाहिश है कि कलाम मुकद्दस का वो हिस्सा जो मुकद्दस यूहन्ना की अंजील में पाया जाता है, उसे पढूं। अब इन थोड़ी आयात को जिसे हम पढ़ते और मंसूब करते हैं, जो इस बात के लिए हमें बुनियाद मुहैया करती हैं कि हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। और हमेशा, कभी एक मर्तबा भी नहीं, बल्कि मैंने हमेशा याद रखा है, जब भी मैं मजबे पर आता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि सिर्फ वही कहूँ जो वो कहने जा रहा है। मैंने हमेशा कोशिश की है कि इंतजार करूँ, ध्यान करूँ, मुतालिया करूँ, दुआ करूँ, जब तक कि मैं महसूस न करूँ कि अब मेरे पास कुछ है जो लोगों की मदद के लिए होगा। अगर मैं मदद नहीं कर सकता हूँ, तो फिर मुझे मजबा पर खड़ा होने की भी जरूरत नहीं है, समझे? मदद करने की कोशिश करनी चाहिए। और अब आज रात बिलाशुबा हमारे इज्तमा का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज सुबह से बाहर जा चुका है, और उनमें से ज्यादातर लोग अपने घर को जा चुके हैं। लेकिन आज रात मैं आपको बताता हूं कि अगर आप यहां रुकते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि 45 मिनट के लिए किसी मौजू पर बात करें, इसलिए कि मैं उम्मीद करता हूं कि ये पैगाम हमारी मदद करेगा। और अब हम मुकद्दस यूहन्ना के 16वें बाब पर बुनियाद रखने जा रहे हैं और आए शुरू करते हैं 16वें बाब की 7वीं आयत से और पढ़ते हुए 15वीं आयत तक आते हैं। लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि अगर मैं ना जाऊँ तो वो मददगार तुम्हारे पास नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं जाऊँगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा, और वो आकर दुनिया को गुनाह और रास्तबाजी और अदालत के बारे में कसूरवार ठहराएगा। गुनाह के बारे में इसलिए क्योंकि वो मुझ पर ईमान नहीं लाते, रास्तबाजी के बारे में इसलिए क्योंकि मैं बाप के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर ना देखोगे, अदालत के बारे में इसलिए क्योंकि दुनिया का सरदार मुजरिम ठहराया गया है। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी हैं, मगर अब तुम उनकी बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन जब वो यानी रूह हक आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा, इसलिए कि वो अपनी तरफ से ना कहेगा, लेकिन जो कुछ सुनेगा वो ही कहेगा और तुम्हें आइंदा की खबरें देगा, क्योंकि वो मेरा जलाल जाहिर करेगा, इसलिए कि मुझ ही से हासिल करके तुम्हें खबरें देगा। जो कुछ बाप का है वो सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वो मुझ ही से हासिल करता है और तुम्हें खबरें देगा। अब 13वीं आयत में इस तरह है, लेकिन जब वो यानी रूह हक आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा, यानी जब रूह हक आएगा तो वो तमाम सच्चाई की राह में तुम्हारी रहनुमाई करेगा। सच्चाई क्या है? कलामे मुकद्दस सच्चाई है, क्योंकि वो कहेगा, इसलिए कि वो अपनी तरफ से ना कहेगा, लेकिन जो वो सुनता है वो वही कहेगा, जो वो सुनता है वो वही कहेगा। दूसरे लफ्जों में वो वही होगा जो बातों को जाहिर करेगा, आप समझे। और अब्रानियों 4वें बाब में बाइबल कहती है, खुदा का कलाम दो धारी तलवार से भी ज्यादा तेज है, जो दिल के ख्यालों और इरादों को परखता है। देखें, जो वो सुनता है वो वही कहेगा और वो आने वाली बातों की तुम्हें खबर देगा, समझे। वो क्या करने जा रहा है? रूल कुछ जो खुदावन यसु मसीह के नाम में आएगा। और मैं पसंद करूंगा कि अगले कुछ मिनटों के लिए आपकी तवज्जो लफ्ज रहनुमा पर दिलाऊं, एक रहनुमा। आप जानते हैं कि मेरे पास कुछ तजर्बात हैं जो जंगल में रूनमा हुए थे। एक रहनुमा जो आपके चौगिर्द किसी के होने को जाहिर करता है। आपके पास एक रहनुमा को होना ही चाहिए जब आप नहीं जानते कि आप किस सिमत को जा रहे हैं। और शिकारी होते हुए पूरी दुनिया के चौगिर्द मुझे रहनुमाओं से मिलने का मौका मिला है, और मैं खुद कोलोराडो में एक रहनुमा था, क्योंकि मैं उस मुल्क को जानता हूँ। मैं वहाँ चराई और बहुत सारे काम करता रहा हूँ, बस मैं कोलोराडो में रहनुमाई कर सकता हूँ। अब एक रहनुमाई करने वाला ही रास्ते को जानता है, वो जानता है कि वो कहाँ जा रहा है और वो क्या कर रहा है और कैसे रास्ते में आपकी हिफाजत करनी है, समझे। वो सब कुछ समझता है कि आप कहीं खो ना जाएं। और एक रहनुमाई करने वाला इंसान चुना हुआ होता है, और अगर वाकई ही वो एक रहनुमाई करने वाला है तो उसका चुनाव रियासत की तरफ से होता है। और अब अगर आप बियाबान में घूमने जा रहे हैं जहां शायद आप पहले कभी नहीं गए, और ये अच्छी बात नहीं है अगर आप बगैर एक रहनुमा के जाते हैं। दोस्ताना तौर पर कहता हूं, कुछ ऐसी जगह हैं जहां आप बगैर रहनुमा के नहीं जा सकते, मिसाल के तौर पर जैसे कनाडा। ये रहनुमा ही है जो आपको खेल में अलामत के तौर पर इख्तियार देता है, क्योंकि वो अपने आप में इस अलामत को रखता है और वो इसके लिए आपका जिम्मेदार है। अगर आपके साथ कुछ हो जाता है तो ये उसकी जिम्मेदारी है। उसके पास इख्तियार है कि वो आपकी हिफाजत करे। उसे चाहिए कि आपको देखे कि कहीं आप खो ना जाएं। उसे यकीनन सब मालूम होना चाहिए, इसलिए उसे आपको वहाँ नहीं भेजना चाहिए जहाँ से आप वापसी का रास्ता भी भूल जाए। और अगर आप खो जाते हैं तो वो उस जगह को बड़े अच्छे तरीके से जानता हो, ताकि वो किसी भी वक्त आपको वहाँ से निकाल सके। वो इन तमाम बातों को जानता हो तो फिर ठीक है, या फिर वो एक रहनुमा नहीं हो सकता और ना ही उसके पास एक रहनुमा का इख्तियार हो सकता है। इन चीजों के लिए बाज़ औकात आपको वक्त लेना पड़ता है और पहले से बंदोबस्त करना पड़ता है। बाहर जाने से पहले रिजर्वेशन को हासिल करना पड़ता है, और अगर आप बाज़ औकात वो पहले ही बुक होता है तो फिर वो आपको नहीं ले जा सकता, तो फिर कुछ अरसे के लिए वो आपको छोड़ देता है, इसलिए कि वो जमीनी रहनुमा है। लेकिन खुदा का रहनुमाई करने वाला रहनुमा आपको कभी नहीं छोड़ता, वो हमेशा तैयार रहता है, हमेशा ही तैयार रहता है। अब अगर आप इन चीजों की तैयारी नहीं करते, और मिसाल के तौर पर आप बियाबान में तफरी करने जाते हैं जहां इससे पहले आप कभी नहीं गए, तो फिर हो सकता है कि आप खो जाएं और तबाह हो जाएं। आपके पास तकरीबन 1% मौका है कि आप बियाबान से बाहर आ जाएं। ऐसा ही है अगर वो भी जंगल ज्यादा घना ना हो, तो शायद आपके पास 1% मौका है कि आप खुद के जरिए बाहर आ जाएं। लेकिन अगर ये बहुत घना खतरनाक जंगल है, तो फिर वापसी पर रास्ते में आपके पास 1% भी मौका नहीं कि आप बाहर आ जाएं। बाहर आने का कोई तरीका नहीं, क्योंकि आप खुद चलकर मौत की वादी में चले गए हैं, क्योंकि आप ये कर चुके हैं, तो फिर आप खत्म हो गए हैं, अब आप हलाक हो जाएंगे। अगर आपके पास एक रहनुमाई करने वाला नहीं है जो इस मुल्क को जानता और ये जानता हो कि वापस कैसे आना है। आप में से अक्सर ने उस मजमून को पढ़ा है जो पिछले साल ट्यूसान एरिजोना में उन स्काउट्स लड़कों के साथ पेश आया, यहाँ तक कि वो सब तरबियत याफ्ता थे कि कैसे अपनी हिफाजत करनी चाहिए, क्योंकि वो सब स्काउट थे और वो सब कोई आम स्काउट्स ना थे, बल्कि वो मुकम्मल तौर पर स्काउट्स थे। और वो पहाड़ों पर तफरी करने के लिए चले गए और वहाँ एक बर्फानी तूफान आया और मौसम ने अपनी हालत तब्दील की, और जब उन्होंने अपने आप को खोया हुआ पाया तो वो सब हलाक हो गए, क्योंकि उन्होंने वहाँ किसी चीज को हसबे दस्तूर मौसम के हालात से हटकर तब्दीली में आता देखा था। वो सब नहीं जानते थे कि कैसे बाहर निकलें, समझे। और मैं भूल गया हूँ कि कितने लड़के वहाँ पहाड़ पर हलाक हुए थे। अगरचे उनके पास हेलीकॉप्टर थे और सब कुछ था, और फौज के लोग और नेशनल गार्ड्स और दूसरे मदद करने वाले और सब कुछ था, लेकिन वो सब खो चुके थे। उनमें से एक भी नहीं जानता था कि उस वक्त वो कहाँ पर हैं, और वो सब अपने आप की हिफाजत ना कर सके, और वो सब बर्फ में हलाक हो गए, क्योंकि वो मौसम को नहीं जानते थे। वो मशरिक, जनूब, मगरिब या शमाल को जा रहे थे, ऊपर या नीचे, ये कैसा मौसम था, सब कुछ एक जैसा नजर आ रहा था। अब मौसम की परवाह किए बगैर एक रहनुमा जानता है कि वो इस वक्त कहाँ है। वो ऐसा करने के लिए लेस होता है, वो जानता है कि वो क्या कर रहा है, उसकी हर चीज के साथ वाकफियत होती है और वो हर चीज को देखना जानता है। इसलिए अगर वो तारीकी में भी हो तो वो किसी खास चीज को महसूस कर सकता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास यहाँ रहनुमा के मुतालिक एक पुरानी तरकीब है। आप जानते हैं, अगर आप सितारों को देख सकते हैं, और अगर आप सितारों को देखेंगे तो कोई भी बता सकता है कि आप कौन सी राह को जा रहे हैं, और आप हमेशा चाहते हैं कि एक हकीकी सितारे को देखें, और सिर्फ एक ही हकीकी सितारा है, और वो शमाली सितारा है। देखें, सिर्फ एक ही है जो हमेशा एक ही जगह कायम रहता है, जो मसीह की नुमाइंदगी करता है कि वो कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। दूसरे सितारे घूमते रहते हैं, लेकिन वो हमेशा कायम रहता है। हो सकता है कलीसियाएं आपको इस तरफ खींचे या कुछ उस तरफ खींचे, लेकिन उसे नहीं खींच सकती, क्योंकि वो हमेशा यकसा है। ठीक है, अब अगर आप शमाली सितारे को नहीं देख सकते क्योंकि उस पर बादल हैं, तो आप गौर करें। अगर ये दिन का वक्त है और आप खो चुके हैं, तो फिर आप दरख्तों को देखें, और दरख्त के हमेशा शमाली जानिब घास फूस वगैरह ज्यादा उगती है, क्योंकि जनूब की तरफ सूरज दरख्त पर ज्यादा पड़ता है बनिस्बत शमाल की। लेकिन क्या हो अगर अंधेरा हो, तो फिर आप घास फूस को नहीं देख सकते, तो फिर आप अपनी आंखें बंद कर लें और कुछ भी करने की कोशिश ना करें, बस अपनी आंखों को बंद कर लें और दरख्त की छाल तलाश करें। दरख्त के चारों तरफ अपने हाथों को इस तरह घुमाएं जब तक आपके हाथ की उंगलियां दरख्त की छाल को ना पकड़ लें, और फिर आहिस्ता आहिस्ता दरख्त के चौगिर्द घूमना शुरू कर दें। और जब आपका हाथ किसी सख्त जगह से टकराए जहां वाकई दरख्त की छाल मोटी है, वहां से उसे पकड़ लें। यही शमाली सिमत है। आंधी में आप बता सकते हैं कि आपका सर किस रास्ते की जानिब है, शमाल या जनूब की तरफ। और उस राह पर वो बेशुमार चीजें हैं, लेकिन इन चीजों को रहनुमा ही जानता है और वो जानता है कि कैसे काम करना है। लेकिन एक आम आदमी उठता है और कहता है, मैं इनमें कुछ भी फर्क महसूस नहीं करता हूँ। देखें, समझे? आपको इस जैसी रहनुमाई से तरबियत याफ्ता होना चाहिए। और वो लड़के बेशक वो बेहतरीन स्कॉट थे। हो सकता है कि वो इस काबिल हों कि गिरा बांध लें, हो सकता है वो इस काबिल हों कि पत्थरों से आग जलाते हों, हो सकता है और बहुत से काम करते हों। मगर ये जानना कि आप अपने रास्ते से बाहर हैं, यही सोचना है। वो सब जानते थे कि वो अपने रास्ते से बाहर निकल गए हैं, इसलिए वो सब लड़के हलाक हो गए, क्योंकि उन्होंने अपने साथ रहनुमा को नहीं लिया था। 2 साल गुजरे कि कलोराडा में एक ना समझ बाप हो जो ऊपर पहाड़ों पर जा रहा था, और उसके साथ उसका बेटा जिसकी उम्र 6 या 7 साल थी। वो ना समझ बाप उसे अपने पहले हरण के शिकार पर ले जा रहा था। बस जब वो पहाड़ी की बुलंदी पर पहुँचे और उस छोटे लड़के ने अपने वालिद से कहा, डैडी मैं थक गया हूँ, मेरी पुश्त पर बैठ जाओ बेटा, अभी तक हम काफी बुलंदी पर नहीं हैं, हरण काफी बुलंदी पर होते हैं। ऊपर और ऊपर और ऊपर, यहाँ तक कि वो आदमी चोटी पर पहुँच गया। वो नहीं जानता था, क्योंकि वो शहरी आदमी था, वो कुछ भी शिकार करने के मुतल्लिक नहीं जानता था कि किस जगह जाना है या किस तरह शिकार करना है। कोई भी इंसान जो जंगल की किसी भी चीज के मुतल्लिक जानता है, वो ये भी जानता है कि हरन बुलंदी पर नहीं ठहरते, हरन ऊपर बुलंदी पर नहीं जाते, जंगली बकरे ऊपर जाते हैं, ना के हरन। हरन नीचे होते हैं जहाँ वो चर सकते हैं, हरन वहाँ होते हैं जहाँ उनको खाने को कुछ मुयस्सर होता है। बस उस आदमी ने सोचा, अगर मैं वहाँ चट्टानों के ऊपर चढ़ जाता हूँ तो मैं एक नर हरन को तलाश कर लूँगा। उसने एक तस्वीर देखी थी जिसमें कुछ हरन चट्टान के ऊपर खड़े हुए थे, और उस आदमी ने सोचा वो उन्हें वहीं तलाश करेगा। क्या उन्होंने जो मैगजीन में पढ़ा उस पर तवज्जो नहीं दी? मेरे खुदाया, ओ मेरे खुदाया, आपने एक ड्रोना ख्वाब देखा होगा। मगर सिर्फ एक ही काम करना है, और वो है एक रहनुमा को लें, ताकि आप जानते हों कि इस वक्त कहाँ हैं। और वो बाप वहाँ ऊपर था, और अचानक बारिश आ गई और मौसलाधार बारिश शुरू हो गई, और उस आदमी ने शिकार करने में बहुत देर कर दी थी, यहाँ तक कि अंधेरा हो गया था और वो अपनी वापसी का रास्ता भी तलाश ना कर सका। और तब आंधी पहाड़ों की चोटी से गुजरने लगी, और उस आदमी ने खुद तेजी से मुड़ना शुरू कर दिया। और इसी तरह अगर आप बाहर फंस गए हैं, तो आपको जानना पड़ता है कि कैसे जिंदा रहना है, और दूसरी बात कि कैसे जिंदगी को बचाया जाए। और फिर मैं तो दरख्त पर चढ़ गया और फिर फिसल कर नीचे आया, और मैं दरख्त पर चढ़ गया और फिर फिसल कर नीचे आया, ऊपर नीचे इसी तरह करता रहा ताकि जिंदा रहूं। और मैंने बर्फ को हटाया कि ये बर्फ 4 फीट तक जमी हुई थी, कुछ लकड़ियां ली और उन्हें नीचे रखा, और मैं भूखा होने की वजह से मुश्किल से भी खड़ा नहीं हो सकता था, और उन पुरानी लकड़ियों को ऊपर रखा और उन्हें आग दी, और इस तरह गर्मी पहुंची और बर्फ पिघल गई। और तब तकरीबन दिन का 1 या 2 बजे का वक्त था, और फिर उस जगह से लकड़ियों को खींचा और उस गर्म जगह पर मैं लेट गया ताकि जिंदा रहूं। और आपको इस बात का इल्म होना चाहिए कि ये काम कैसे करने हैं। और वो आदमी नहीं जानता था कि वो क्या कर रहा था, उसके साथ कोई नहीं था कि उसकी रहनुमाई करे, और उसने इसके बरक्स अपने छोटे लड़के को अपनी गोद में थामा हुआ था, और यहाँ तक कि उसने महसूस किया कि बच्चे को सर्दी लग गई है और वो मर गया है। ना समझदार बाप। और अगर उसने अपने साथ एक रहनुमा लिया होता तो वो ठीक उसे पहाड़ से वापस नीचे ले आता, इस बात की परवाह किए बगैर कि कौन सा वक्त है, समझे? लेकिन उसने इंतजार किया जब तक के अंधेरा ना छा गया, फिर वो इर्द गिर्द अपने रास्ते को भी देख ना सका। आज मसीहों के साथ भी यही मसला है, वो इंतजार करते हैं यहाँ तक के तारीकी छा जाए, तब वो तलाश करते हैं और रहनुमा के बगैर ही उठ पड़ते हैं। रहनुमा जरूरी है। बस क्या आपने कभी कोई ऐसा इंसान देखा है जो खोया हुआ हो? क्या किसी ने कभी एक खोए हुए इंसान को वापस लाने का तजर्बा किया है? ये बड़ी तरस खाने वाली बात है जो कभी आपने देखी हो। जब एक इंसान खो जाता है वो जंगली बन जाता है, तब वो नहीं जानता कि वो क्या कर रहा है। हमने जंगल में एक इंसान को पकड़ा जो कि एक लड़का था, और वो जंगल में खोया हुआ था, और उसने सोचा था वो भेड़ बकरियां चराने वाला था, लेकिन वो एक खतरनाक इलाके की जानिब मुड़ गया और खो गया। और जब उन्होंने 3 दिन के बाद उसे ढूंढ निकाला तो वो एक जंगली आदमी की तरह दौड़ रहा था और अपनी आवाज बुलंद करके चीख रहा था, और उसने अपने होंठों को चबा लिया था, और उसने अपनी बंदूक फेंक दी, और वो नहीं जानता था कि वो क्या कर रहा है। और जब उसका अपना भाई, जब उन्होंने उसे पकड़ा और उसे बांध दिया, और जब उसका अपना भाई उसकी तरफ आया तो वो लड़का एक जंगली जानवर की तरह उस पर झपट पड़ा और कोशिश की कि उसे काट खाए। वो नहीं जानता था कि वो कहाँ है, क्यों? इसलिए कि वो खोया हुआ था। और जब एक इंसान खो जाता है तो फिर वो भूले भटकों की दुनिया में होता है और वो नहीं जानता कि वो किस दुनिया में है, क्योंकि उसके खो जाने के नाते ये हालत उसकी हो जाती है और वो नहीं जानता कि वो इस वक्त कहाँ है और वो ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है। इसी तरह जब एक इंसान खुदा की तरफ से खोया होता है तो वो ऐसे काम करता है जो आम हालात में नहीं करता। वो ऐसे काम करता है कि एक आम इंसान की सोच से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। खुदा की तरफ से खोया हुआ इंसान ऐसे काम करता है और खुदा की तरफ से खोई हुई कलीसिया भी। एक कलीसिया जो खुदा की हजूरी से दूर जा चुकी है और खुदा के कलाम के असूलों से दूर हो चुकी है, वो ऐसे काम करेगी जिनकी तवक्को आप जिंदा खुदा की कलीसिया से नहीं कर सकते। लेकिन वो अपने पैसों को सट्टेबाजी में लगाते हैं, लॉटरी खेलते हैं, जुए और जो कुछ भी वो कर सकते हैं। वो मुख्तलिफ तालीम देते हैं, आए इसके जरिए कुछ भी करें, उस आदमी की पीठ पर थपकी देते हैं जो कलीसिया में ज्यादा बड़ी रकम देता है, और इसी तरह और बहुत सारे ऐसे काम करते हैं ताकि उनके जरिए उन्हें अपने साथ मिला लें। ये बात दुरुस्त है। बोर्ड के ऐसे डीकन रखे हुए हैं जिन्होंने 4 या 5 मर्तबा शादी की हो, सिर्फ इस तरतीब के जरिए कि वो अपनी आखरत को दुरुस्त बना रहे हैं। सिर्फ एक ही बात आपकी आखरत को दुरुस्त बनाती है, जिसको आपने हासिल करना है कि आप खुदा की तरफ से आयद की गई जिम्मेदारी को पूरा करें, खड़े रहें और सच्चाई को बयान करें। खोया हुआ इंसान भूले भटकों की बस्ती में है, वो पागल इंसान है। रहनुमा समझदार होता है, वो जानता है कि कैसे जाना और क्या करना है। खुदा ने हमेशा अपने लोगों के लिए एक रहनुमा भेजा है और खुदा कभी भी नाकाम नहीं हुआ। उसने एक रहनुमा भेजा है, लेकिन क्या आपने उस रहनुमा को कबूल कर लिया है? देखें, आपने ईमान से उसे पा लिया है तो फिर आप उसी रास्ते पर चलते हैं जो वो बताता है। और अगर आप जंगल में हैं और आपका रहनुमा कहता है हम इस रास्ते पर जाते हैं और आप दूसरे रास्ते पर जाते हैं, तो फिर आप खो जाते हैं। फिर जब आप खुदा ने हमारे लिए एक रहनुमा भेजा ताकि हमारी रहनुमाई करे, हमें उस रहनुमा की पैरवी करनी चाहिए। कोई मसला नहीं हम क्या सोचते हैं और ये कितनी मुनासिब लगती है और कितनी मज़ाक़ा खेज लगती है, हमें उसकी अतायत को तकसीम नहीं करना है। रहनुमा सिर्फ एक ही है जिसे ये काम करना है। खुदा ने पुराने ऐदनामे में नबी भेजे, वो रहनुमा थे, क्योंकि खुदावंद का कलाम नबी के पास आता है। वो रहनुमा थे, वो लोगों को हदायत देते थे, जैसा कि हमने गुज़िश्ता रात यशायाह और उज़िया के बारे में सीखा। वो खुदा से हदायत पाते थे और वो लोगों को हदायत देते थे ताकि उनकी रहनुमाई करें। और अब खुदा ने हमेशा अपने रहनुमाओं को भेजा है, बल्कि हर एक जमाने में खुदा ने हमेशा कभी भी अपने लोगों को एक रहनुमा के बगैर नहीं रहने दिया। खुदा ने हर जमाने में हमेशा किसी को रखा जो कि जमीन पर उसकी नुमाइंदगी करे। अब बाज़ औक़ात वो रहनुमा को छोड़ देते हैं और हम इसे उजाले से दूर होना कहते हैं। जब यीशु मसीह जमीन पर थे तो क्या आपको याद नहीं, यीशु मसीह ने फरीसियों को कहा तुम अंधे रहनुमा हो। अंधे रहनुमा, रूहानी बातों से अंधे, समझे? अब उन्हें रहनुमा ही होना चाहिए था ताकि लोगों की रहनुमाई करके उनको निजात तक ले जाते, लेकिन यीशु ने कहा तुम अंधे रहनुमा हो और उसने कहा इन्हें छोड़ दो, क्योंकि अगर अंधा अंधे की रहनुमाई करेगा तो क्या वो दोनों गड़े में ना गिरेंगे? अंधे रहनुमा, ओ ये दुनिया कैसे अंधे रहनुमाओं की रहनुमाई में नापाक हो चुकी है। वो नहीं चाहता कि आप अपनी समझदारी पर भरोसा करें। खुदा नहीं चाहता कि आप अपनी समझदारी पर या अपने ख्यालों पर या किसी भी इंसान के बनाए हुए ख्यालों पर भरोसा करें। खुदा एक रहनुमा भेजता है और खुदा चाहता है उसके चुनिंदा रहनुमा को याद रखें, और हमें जरूर ही उस रहनुमा को याद रखना चाहिए। यीशु यहाँ कहता है, यीशु ने कहा मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा और वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा। और जब ये मददगार आया तो उसने पूरी सच्चाई में हमारी रहनुमाई की, और खुदा का कलाम सच्चाई है और कलाम मसीह है। राह, हक और जिंदगी मैं हूँ, वो कलाम है। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था, और कलाम मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा। फिर अगर हम हकीकी रहनुमा की पैरवी करते हैं जो कि रूल कुछ है, वो हमें वही बताता है जो उसने देखा था और जो उसने सुना था, और उसने हमें आने वाली बातें दिखाई थी। आमीन, यहाँ आप हैं। वो आपको आने वाली बातें दिखाने जा रहा है। और आज जब कलीसियाओं ने इस रहनुमा को रद्द कर दिया है, तो कैसे हम तवक्को कर सकते हैं कि हम आसमान पर जा सकते हैं, जबकि रूल कुछ को हमारी रहनुमाई के लिए भेजा गया था। लेकिन हम किसी कार्डिनल, किसी बिशप, किसी नाजर को या इसी तरह के किसी और शख्स को अपनी रहनुमाई के लिए लेते हैं, जबकि रूल कुछ हमें हमारी रहनुमाई के लिए दिया गया था। और रूल कुछ हमेशा कलाम की बात करता है। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी हैं, लेकिन तुम अब उसे समझ नहीं सकते, लेकिन जब वो आएगा तो वो इन बातों में तुम्हारी रहनुमाई करेगा। और यही सबब मोहरों के आने का हुआ, और साथ ही मोहर के मुकम्मल होने पर खुदा के वेद मुकम्मल हो जाने चाहिए, उसको जानने के लिए कि खुदा कौन है, क्या है, और इस नाते से उसकी फितरत क्या है और वो कैसे रहता है। अंदाजा करें, आपको यहाँ होना चाहिए किसी भी तरीके से और किसी भी वक्त। देखें, हम उसके कद के अंदाजा तक खुदा के बेटे और बेटियाँ हो जाएं। वो कलीसिया जो मसीह के लहू से धुली है, वो पैसों से नहीं खरीदी गई, बल्कि यीशु मसीह के लहू के जरिए उसकी कीमत अदा की गई है। अब यहाँ हमारे पास एक रहनुमा है, और वो खुदा का मुहैया करदा रहनुमा है। अब हम जंगल में जा रहे हैं और हम अपनी सड़क पर रवा दवा हैं, और हम इस रहनुमा के बगैर पार नहीं जा सकते। और क्या कोई जुर्रत करने की कोशिश करेगा कि कोई दूसरा रहनुमा इसकी जगह ले? और अगर आप ऐसा करते हैं तो वो आपको निशान से हटा देगा। यही रहनुमा उस रास्ते को जानता है। वो रास्ते के हर एक इंच से वाकफियत रखता है। वो यहाँ बैठे हुए हर शख्स के दिल को जानता है। वो हर ख्याल को जानता है जो आपके दिल के अंदर है। वो जानता है कि आप कौन हैं और आपने क्या किया है, और आपके मुतल्लिक वो सब कुछ जानता है। ये खुदा की तरफ से रहनुमा है रूल कुछ, और वो आप पर सब बातें जाहिर करेगा और आपको वही बातें बताएगा जो सुनेगा, आपके कलाम को ठीक वापस दोहराएगा और बताएगा जो आपने कहा था। आमीन। वो बता सकता है कि आप क्या थे, आपने क्या किया है और आप कहाँ जा रहे हैं। एक रहनुमा जो कि एक दुरुस्त किस्म का रहनुमा है, वो आपकी रहनुमाई पूरी सच्चाई तक करेगा, और उसका कलाम सच्चाई है। अब रूल कुछ कभी भी आपको इंसान के बनाए हुए अकीदे पर आमीन कहने नहीं देगा। वो तो सिर्फ खुदा के कलाम पर जोर देकर आमीन कहेगा, क्योंकि ये इसी तरह है। रूल कुछ कभी भी आपकी किसी दूसरे रास्ते पर रहनुमाई नहीं करेगा। अब ये बड़ी अजीब बात है, जैसे कि हम सब और हमारी तमाम बड़ी तंजीमें और दूसरी चीजें, हम में से हर एक ये दावा करता है कि वो रूल कुछ से रहनुमाई पाता है। इसमें बहुत फर्क है। जैसे दिन और रात में फर्क है, वैसे ही हम सब में फर्क है। लेकिन जब पालूस, वो छोटा फरीसी जिसने रूल कुछ को हासिल किया, जब उसने हननिया से बपतिस्मा लिया और वो अरब को चला गया और 3 साल तक मुतालिया किया और फिर वापिस आया, और उसने कभी भी कलीसिया से किसी बात पर 14 साल तक सलाह मशवरा नहीं किया, और जब पालूस आया और पत्रस से मुलाकात की जो कि यरूशलेम में कलीसिया का सरबरा था, और उन दोनों की तालीम में जरा बराबर भी फर्क ना था। क्यों? इसलिए कि दोनों के पास एक ही रूल कुछ था। जैसे पत्रस यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा देता था, वैसे ही पालूस भी किसी रुकावट के यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा देता था। जहां पत्रस ने रूल कुछ के बपतिस्मा की तालीम सिखाई और तकदीस की और दूसरी बातों की तालीम दी, पालूस ने कभी भी कलीसिया से बगैर सलाह मशवरा किए बिल्कुल वही तालीम दी, क्योंकि उन दोनों का एक ही रहनुमा था। तो फिर आज हम एक कैसे हो सकते हैं जबकि लोग इन सच्चाइयों का इनकार करते हैं? जब पत्रस ने कलीसिया को एक रास्ते पर तरतीब देने के मुतालिक सिखाया, तो पालूस के पास भी वही तालीम थी, क्योंकि उन दोनों के पास एक ही रहनुमा था। रहनुमा कभी भी ऐसा नहीं करता कि एक को इस राह पर चलाए और दूसरे को दूसरी राह पर, और एक को मशरिक की तरफ भेजे और दूसरे को मगरिब की तरफ। वो तो आपको एक साथ रखना चाहता है, और अगर हम रूल कुछ को अपने आप को एक साथ रखने देंगे तो तब ही हम एक होंगे। अगर हम शैतान को अपने आप को गलत रास्ते पर भेजने ना देंगे, तो हम एक दिल, एक जहन और मुत्तफिक हो जाएंगे, एक ही रूह से जो कि रूल कुछ है, खुदा के रहनुमा से जो हमारी सारी सच्चाई जानने में रहनुमाई करेगा। ये दुरुस्त है, लेकिन आपको अपने रहनुमा की पैरवी करनी होगी। जी हाँ जनाब, निकोदीमस को देखें, उसे एक रहनुमा की जरूरत थी जबकि वो एक जहीन इंसान था। वो एक उस्ताद था और तकरीबन 80 साल के करीब था। वो फरीसियों में से था, वो सैनहेड्रिन कोर्ट की काउंसिल मिनिस्ट्रल एसोसिएशन से ताल्लुक रखता था। वो उन बड़े आदमियों में से एक था, इसराइल का उस्ताद और आलिम। जरा सोचें, एक अजीम उस्ताद। जी हाँ, वो शरीयत को जानता था, लेकिन जब नए सिरे से पैदा होने की बात शुरू हुई तो उसे एक रहनुमा की जरूरत थी। वो इस बात के लिए भूखा था। वो जानता था कि यहाँ कुछ मुख्तलिफ बात है। उसका उस रात मसीह के पास आना इस बात का सबूत है। बस इससे ये साबित होता है कि वो बाकी लोगों की निस्बत मुख्तलिफ जानता था, तो भी उन बाकी लोगों में ऐसी दलेरी ना थी जो कि निकोदिमस में थी। वहाँ ऐसा कोई भी ना था जो उसकी तरह आ सकता और ऐसा करता जो उसने किया। आप तमाम जानते हैं, लोग रात में आने की वजह से निकोदिमस को मुजरिम ठहराते हैं। वो वहाँ गया, वो किसी भी तरह वहाँ पहुँचा। मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो रात या दिन में कभी भी शुरू नहीं करेंगे, लेकिन वो वहाँ पहुँच गया क्योंकि उसे एक रहनुमा की जरूरत थी। और उसने कहा, खुदावंद, हम सनेड्रिन अदालत से, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है। वो ये क्यों जानता था? उसे जाहिर किया गया था। देखें, वो जानना चाहता था कि नए सिरे से पैदा होने का क्या मतलब है, और वो सीधा ठीक रहनुमा के पास गया क्योंकि खुदा ने जाहिर कर दिया था कि यही उसका रहनुमा है, यानी यीशु। देखें, उसने क्या कहा, खुदावंद, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है। कोई इंसान इन कामों को नहीं कर सकता जो तू करता है जब तक कि खुदा उसके साथ ना हो। ये इस बात का सबूत था कि जिंदा खुदा उसके अंदर है। यीशु ने क्या गवाही दी? ये काम मैं नहीं करता, ये मेरा बाप है जो मुझ में रहकर करता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ, बेटा अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो बाप को करते देखता है, बेटा उन कामों को वैसे ही करता है। बाप काम करता है तो मैं भी काम करता हूँ। दूसरे लफ्जों में, खुदा उसे दिखाता था कि क्या करना है, और वो जाता और उस काम को सरंजाम देता था। वो किसी भी काम को नहीं करता था जब तक खुदा ही उसे उस काम को करने के लिए नहीं भेजता था। आमीन। यही उसकी हकीकी और असल खुली सच्चाई है। हम कोई कदम ना उठाएं और इंतजार करें जब तक रूह ही हमें कदम उठाने को ना कहे, यही बात है। और फिर मसीह में मुकम्मल तौर पर आ जाएं, क्योंकि वो आपको इसके गिर्द इस तरह धकेलता नहीं जैसे वो मुझसे करता है, लेकिन आप उसके सर का इशारा पाते ही तैयार हो जाएं, तो फिर आप रुकने नहीं जा रहे, क्योंकि आप जानते हैं कि यही खुदा की मर्जी है। उसे एक रहनुमा की जरूरत थी। वो ही एक साबित शुदा रहनुमा था। वो उस रहनुमा के जरिए इस तरह रहनुमाई पा सकता था क्योंकि वो जानता था कि उस रहनुमा में खुदा की तहरीक है। वो जानता था कि जिस रस्म और रवाज की और जो कुछ की भी उसने खिदमत की है, हो सकता है कि वो फरीसियों और सदूकियों से उसे हासिल हुई हो। और उसने देखा कि जिन अकीदों की उसने सारी उम्र खिदमत की, उनसे कुछ नहीं हुआ। लेकिन यहाँ एक इंसान मंजरे आम पर आता है और कहता है कि वही बाइबल के वादे का मसीहा है, और फिर वो जहाँ भी मुड़ता है चारों तरफ खुदा ही के काम करता है। यीशु ने कहा, अगर मैं अपने बाप के काम नहीं करता तो फिर मेरा यकीन ना करो, लेकिन अगर तुम मेरा यकीन नहीं करते तो उन कामों का ही यकीन करो जो मैं करता हूँ, क्योंकि वो मेरी गवाही देते हैं। फिर इसमें कोई हैरत की बात नहीं कि निकोदिमस ने कहा, खुदावन, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से एक उस्ताद होकर आया है, क्योंकि कोई इंसान इन कामों को नहीं कर सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। देखें, अगरचे वो इन सारी बातों में एक उस्ताद था, मगर उसे एक रहनुमा की जरूरत थी। वो अपनी कलीसिया में एक उस्ताद था, उसके पास आला रुतबा था, और उसके पास मसरूफ मकामात थे, और वो एक बड़ा आदमी था। इसमें कोई शक नहीं कि उसकी इज्जत मुल्क के सारे लोग करते थे, लेकिन जब नए सिरे से पैदा होने की बात शुरू हुई तो उसे एक रहनुमा की जरूरत थी। इसी तरह हम हैं, जी हाँ, क्योंकि हमें भी एक रहनुमा की जरूरत है। कर्नीलियस, वो एक बड़ा आदमी और एक इज्जतदार इंसान था। उसने गिरजे बनवाए, वो यहूदियों की इज्जत करता था क्योंकि वो जानता था कि उनका दीन ठीक है, और उसने खैरातें बांटी और हर रोज दुआ करता था। लेकिन जब रूल कुछ आया, कलीसिया में कुछ चीजों का इजाफा हुआ, तो उसे एक रहनुमा की जरूरत थी। खुदा ने उसके पास रूल कुछ को भेजा, उसने इसे एक शख्स बनाम पत्रस में भेजा, क्योंकि जब पत्रस अभी कलाम सुना ही रहा था तो रूल कुछ उन पर नाजिल हुआ। खुदा ने रहनुमा को पत्रस के जरिए इस्तेमाल किया, उसने उसे इस्तेमाल किया क्योंकि उसने कर्नीलियस की ठीक राह पर रहनुमाई करनी थी। जब वो अभी कलाम कर ही रहा था तो रूल कुछ उन गैर अक्वाम के लोगों पर नाजिल हुआ। तब उसने कहा, क्या अब कोई इंसान इन्हें पानी से रोक सकता है कि बपतिस्मा ना ले? देखें, अब भी रहनुमा ही बोल रहा था, न के पतरस, क्योंकि वो तो यहूदियों का ग्रोह था, नहीं बल्कि गैर अकवाम का। वो नापाक और आलूदा थे उसके सामने, और वो तो यहाँ तक कि वहाँ जाना भी नहीं चाहता था, लेकिन रहनुमा ने कहा मैं तुझे भेज रहा हूँ। जब आप रहनुमा के मुकम्मल कब्जे में होते हैं तो फिर आप उसकी रहनुमाई में चलते हैं और आप वो काम करते हैं जिसके बारे में आप सोचते भी नहीं। ओ रुलकुस के जरिए चलना कैसी अच्छी बात है, क्योंकि वो रहनुमा है। ये बात ठीक है, उसने पत्रस के जरिए कलाम किया और उसको बताया कि उसे क्या करना चाहिए। फिर जब वो सारे लोग रुलकुस से भर गए तो उसने कहा हम इन्हें पानी से नहीं रोक सकते, देखें उन्होंने रुलकुस को हासिल किया है जैसे कि हमने इब्तदा में किया था, और उन्होंने उन सब को खुदावंद यीशु के नाम में बपतिस्मा दिया। अब ये करने के लिए किसने उसकी रहनुमाई की? उसी रहनुमा ने जो पत्रस के अंदर था। क्या यीशु ने उन्हें ये नहीं बताया था कि ये मत सोचना कि तुम्हें क्या कहना है, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो बल्कि ये बाप है जो तुम में रहता है और वो बोलता है। आमीन। हबशी खोजा यरूशलेम की तरफ से आ रहा था और खुदा का रहनुमा उस वक्त वहाँ था, यानी रुलकुस, और खुदा ने वहाँ एक आदमी को इसी रहनुमा से भर रखा था। यहाँ तक कि वो आदमी एक मनाद भी ना था, वो बिल्कुल एक डीकन था। वो आदमी वहाँ बीमारों को शिफा दे रहा था और बदरूहों को निकाल रहा था, और इस सबब से वहाँ बड़ी जुम्बश हो रही थी और शहर में बड़ा खुशी का समा था, और उसके चगिर्द सैकड़ों लोग जमा हो गए थे। और रहनुमा ने कहा अब बहुत हो गया, आओ वापस उस राह पर चलें। उसने रहनुमा के साथ कोई बहस ना की। अपने रहनुमा के कलाम से कभी भी बहस और तकरार ना करें, सिर्फ उसकी पैरवी करें। अगर आप उसकी पैरवी नहीं करते तो आप खो जाते हैं, और याद रखें जब आप उसे छोड़ देते हैं तो फिर आप अपने किए के खुद जिम्मेदार हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हमेशा रहनुमा के करीब रहें। इसलिए सड़क पर रहनुमा ने कहा फिलिप्पस अब इस ग्रोह को छोड़ और यहाँ से बाहर रेगिस्तान में जा जहाँ कोई भी नहीं है, लेकिन मैं तुझे वहाँ भेज रहा हूँ, और जब मैं तुझे वहाँ ले जाता हूँ तो देख वहाँ कोई होगा। वहाँ एक हबशी खोजा तन्हा आ रहा था और वो इथोपिया की मलका का वजीर था। बस वो हबशी खोजा यशायाह के सहीफे को पढ़ते आ रहा था, और रहनुमा ने कहा जरा रथ के करीब हो जा, और उसने रथ के करीब जाकर कहा क्या जो तू पढ़ता है उसे समझता भी है? उसने कहा मैं कैसे समझ सकता हूँ जब तक कोई आदमी मुझे ना समझाए। ओ मेरे खुदाया, लेकिन फिलिप्पस के पास रहनुमा था। आमीन। और उसने बिल्कुल उसी हवाले से शुरू किया और बयान करते हुए उसे मसीह तक लाया। आमीन। सिर्फ रहनुमा के वसीले, ना कि उसे कोई अकीदा बताया। उसने हबशी खोजा को रहनुमा के मुतालिक बताया जो कि मसीह है, और वहाँ रास्ते में उसे किसी जगह पानी में बपतिस्मा दिया। यकीनन यही किया। ओ मैं ये कितना पसंद करता हूँ, जब इसराइल ने वादे की सरजमीन के लिए मिस्र को छोड़ा, खुरूज 13:21 में, खुदा जानता था कि इसराइली लोगों ने पहले कभी इस रास्ते पर सफर नहीं किया। ये सिर्फ 40 मील का सफर था, लेकिन फिर भी उन लोगों को जरूरत थी कि कोई उनके साथ जाए, क्योंकि वो अपने रास्ते को खो देंगे। इसलिए खुदा ने उनके साथ एक रहनुमा भेजा। खुरूज 13:21 में कुछ इस तरह है, मैं अपना फरिश्ता तेरे आगे आगे भेजता हूँ, यानी आग का सतून जो रास्ते में तेरी निगेबानी करे, ताकि उन लोगों की उस वादे की सरजमीन तक रहनुमाई करे। और बनी इसराइल ने उस रहनुमा की पैरवी की, यानी उस आग के सतून की जो रात के वक्त होता था और दिन में बादल बन के उनके साथ रहता था। और जब ये रहनुमा रुक जाता तो बनी इसराइल भी रुक जाते, और जब वो सतून चलता तो वो भी चलते, और जब वो रहनुमा उन लोगों को वादा की सरजमीन के करीब ले गया तो वो इस काबिल ना थे कि उसमें दाखिल हो जाएं। उसने दोबारा उन लोगों को बियाबान में धकेल दिया, फिर वो उन लोगों के साथ नहीं गया। बिल्कुल यही कुछ आज कलीसिया के साथ है, मगर कोई शक नहीं कि आज खुदा कितना धीमा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे नूह के दिनों में। कलीसिया बिल्कुल वैसे ही चलती रही कि जैसे उसने खुद को ठीक कर लिया है, और वो अब चक्कर पर चक्कर और चक्कर पर चक्कर खिलाए जा रहा है। थोड़े इसराइली जानते थे जब वो नारे लगा रहे थे, मिस्री सिपाहियों को मरे हुए देख रहे थे, और डूबे हुए रथों को देखकर, वो फराउन के रथों को वापस मुड़ते हुए देखकर, वो जान गए कि उन्होंने फतह हासिल कर ली है। मूसा रू में गा रहा था, मरियम रू में नाच रही थी, और इसराइल की बेटियां किनारे पर इधर उधर दौड़ रही थी और नारे लगा रही थी और नाच रही थी, क्योंकि अब वो दूध और शहद वाले मुल्क से कुछ ही दिनों की मुसाफत पर थे। थोड़े से बुढ़ बढ़ाने की वजह से ये 40 साल की दूरी पर चले गए, क्योंकि उन्होंने खुदा और रहनुमा के खिलाफ बुढ़ बढ़ाना शुरू कर दिया। और हम भी अपने आप को बिल्कुल इसी तरह पाते हैं। इसके बाद मुझे श्री पोर्ट जाना है। वहाँ रूल कुछ का नजूल शुक्रगुजारी के रोज हुआ था, जिसको अब 50 साल गुजर गए हैं। लुइजियाना में ये शुक्रगुजारी के दिन पर वाकया हुआ था। देखें, उस वक्त से लेकर अब तक कलीसिया कितनी गिर चुकी है। क्या आप यकीन करते हैं कि रोमन कैथोलिक कलीसिया उस वक्त इब्तदाई दौर में पेंटिकोस्टल कलीसिया थी? ये सच्चाई है, ये बिल्कुल दुरुस्त है। ये एक पेंटिकोस्टल कलीसिया थी, लेकिन इसमें इतने सख्त और जिद्दी और बड़े रुतबे वाले लोग आ गए। उन्होंने खुदा के कलाम की जगह अपनी रस्म और रवाज और अपने असूल और कायदे शामिल कर दिए और इसी तरह और बहुत सारी बातें शामिल कर दी। और देखें अब उनके पास क्या नजर आता है, उनके पास थोड़ा सा भी कलाम नहीं है। उन्होंने इसमें तब्दीली करने के लिए और कुछ बढ़ा दिया, जैसे रोटी का एक टुकड़ा जिसे वो रूल कुछ कहते हैं, जैसे उन्होंने गोते के बपतिस्मे को छिड़काव के बपतिस्मे में बदल दिया है। उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा देने की बजाय बाप बेटे और रूल कुछ के अलकाब में इसको बदल दिया है। उन्होंने खुदा के तमाम अहम मजामीन को बदल डाला जो हमारी रहनुमाई के लिए थे, और वो दूर 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 होते गए, अब कलाम की तालीम से बहुत दूर हो चुके हैं। 50 साल पहले जब पेंटिकोस्ट का नजूल लुइजियाना में हुआ, और अगर ये 200 साल मजीद इसी तरह खड़े रहे तो फिर ज्यादा दूर नहीं कि ये गिर जाएंगे बनिस्बत कैथोलिक कलीसिया के जो अब है। अगर उन्होंने इसी तरीके से गिरना जारी रखा जिस तरह से उन्होंने पिछले गुजरे 50 सालों में किया है, क्योंकि मुस्तकिल तौर पर सारे वक्त में वो कलाम में अमेजिश करते रहे हैं, पुरानी तर्ज के खादम जा चुके हैं। आपने इन में से किसी को गलियों में बशारती इबादत में कभी नहीं देखा। सारी चीजें हमने हॉलीवुड के ग्रोह से हासिल कर ली हैं, जैसे कटे हुए बाल, बेहया लबास पहनने वाली खवातीन और मेकअप किए हुए चेहरे और इसके अलावा सब कुछ, और फिर भी अपने आप को मसीह कहते हैं। कुछ छोटे रिकी गिटार लिए हुए ऊपर नीचे उछलते हैं और खवातीन इतना तंग लबास पहनती हैं जैसे कि उनके जिस्म के साथ खाल ही लिपटी हो, ना के कपड़े। ज्यादातर ऐसा ही करते हैं। प्लेटफॉर्म पर झूम रही हैं, प्लेटफॉर्म पर ऊपर नीचे दौड़ रही हैं, कान में बालियां लटकाए नाच रही हैं, और उनमें से अक्सर यहाँ न्यू लेडी लैंड के बाल कटवाकर खुद को कहती हैं कि हम मसीहत में हैं। आज हमें खुदा के भेजे हुए पुराने तर्ज के लोग चाहिए, जलता हुआ दीन जो दुनियादारी की चीजों को जला कर रख दे और कलीसिया से बाहर कर दे। हमें जरूरत है कि हम रूल कुछ की आग के पास वापस आएं और उस चीज के पास वापस आएं जो सारे गंद को जला कर रख दे, उस पुरानी मुनादी के रवाज को वापस लाएं, आसमान को ऊंचा बनाएं और जहन्नम को तपता हुआ बनाएं, बंदूक की नाली को सीधा करें। हमें इस किस्म की मुनादी चाहिए। अगर आज आप ऐसा काम करते हैं तो आपकी जमात आपको बाहर कर देगी। कभी कभी बेहतरीन मुनाद भी अपनी कलीसिया के जरिए गलत रास्ते पर चले जाते हैं। यही वजह है कि मेरी कोई तंजीम नहीं है। मेरा एक ही हेडक्वार्टर है जो आसमान पर है। जहाँ कहीं वो मुझे भेजेगा मैं वहाँ जाऊँगा। जो वो कहता है वो मैं कहता हूँ। हम कोई तंजीम नहीं चाहते। अगर इस कलीसिया ने कभी तंजीम के मुतालिक बात की तो फिर ठीक ये अपने पासवान को खो देगी। मैं इस बात के लिए 5 मिनट भी इंतजार नहीं करूंगा। और हर एक कलीसिया जैसे ही वो तंजीमी बीज में चली गई तो वो मुनज्जम हो गई। मुझे एक भी कलीसिया के बारे में बताएं जिसने ऐसा किया और फिर मुझे बताएं कि वो कब दोबारा उठी। रूल कुछ को कलीसिया की रहनुमाई के लिए भेजा गया है, ना कि आदमियों के किसी ग्रुप को। रूल कुछ ही हिकमत का मंबा है। इंसान ही सख्त और बेगर्ज हो जाता है। खुदा ने उन लोगों को बताया कि वो उनके लिए एक रहनुमा भेजेगा, वो उस राह में उनकी रहनुमाई करेगा, और जब तक वो आपके सतून की पैरवी करते रहे तो सब ठीक था। वो उनकी रहनुमाई करता हुआ उन लोगों को वादे की सरजमीन के दरवाजे तक लाया और वो फिर उतनी ही दूर चले गए जितनी दूर थे। फिर यशुआ जो एक अजीम जंगजू था, उस दिन को याद करें जब यशुआ ने उन लोगों से कहा अपने आप को मुकद्दस करो और फिर खुदा तीसरे दिन दरिया यर्दन को खोल देगा और हम पार चले जाएंगे। अब गौर करें यशुआ ने क्या कहा, मैं ये पसंद करता हूँ। उसने कलाम में कहा अहद के संदूक के पीछे रहो क्योंकि तुम इस राह से पहले कभी नहीं गुजरे। अहद का संदूक क्या था? वो कलाम था। अब अपनी तंजीमों के रास्ते पर सफर मत करें, ठीक कलाम के पीछे खड़े रहें क्योंकि तुम इस रास्ते से पहले कभी नहीं गुजरे। और भाइयों, अगर कभी ऐसा वक्त आया है कि मसीही कलीसियाएं अपने आप को जांचें तो वो वक्त अब है। अब हम ठीक वही हैं जहाँ ठीक रोम में एक मीटिंग हो रही है और बहुत सारे फर्क मिटाए जा रहे हैं और कलीसियाओं का इतिहाद किया जा रहा है। फिर जब ये सारी तंजीमें एक साथ इतिहाद कर लेंगी और उस हैवान की सूरत को बनाएंगी, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा बाइबल कहती है। और आप जानते हैं कि आज सुबह हमने पैगाम में क्या कहा था, और अब हम ऐसे मुकाम पर हैं जहां ठीक हर एक चीज पूरी होने को है और लोग अब भी अपने अकीदे के पीछे चल रहे हैं। आपके लिए बेहतर है कि कलाम के पीछे खड़े हो जाएं। कलाम ही आपको पार लगाएगा क्योंकि कलाम मसीह है और मसीह खुदा है और खुदा रूल कुछ है। कलाम के पीछे रहें। ओ जी हाँ जनाब, उस रहनुमा के साथ रहें, ठीक उसके पीछे चलें, उसके सामने मत खड़े हों बल्कि उसके पीछे चलें। उसे अपनी रहनुमाई करने दीजिए, आप उसकी रहनुमाई ना करें, आप उसे आगे चलने दें। यशुआ ने कहा, अब तुम इस रास्ते से पहले कभी नहीं गुजरे क्योंकि तुम इस रास्ते के बारे में कुछ नहीं जानते। यही परेशानी आज है। आपको रहनुमा की जरूरत नहीं है कि वो आपकी उस बैरूनी राह में रहनुमाई करे। हो तुम तमाम गली कूचों को जानते हो और सब समझते हो। तुम गुनाह करने के लिए सब रास्तों से वाकिफ हो। कोई नहीं हो, तुम इस रास्ते पर लंबे अरसे से रह रहे हो। आपको जरूरत नहीं कि कोई आपको इसके मुतालिक बताने की कोशिश करे। आप सारे छोटे रास्तों से वाकिफ हैं। ये ठीक है, आप हर गुनाह से वाकिफ हैं। किसी को आपको बताने की जरूरत नहीं कि चोरी कैसे की जाती है, आप जानते हैं। किसी को आपको बताने की जरूरत नहीं कि लानत कैसे की जाती है, आप ये जानते हैं। किसी को आपको बताने की जरूरत नहीं कि बुरे काम कैसे किए जाते हैं क्योंकि ये निशान तो हर दरख्त और हर जगह पहुंच चुके हैं। लेकिन याद रखें, आप मसीही लोग, आप इनको छोड़ चुके हैं और आप एक दूसरी सरजमीन में हैं क्योंकि आप नए सिरे से पैदा हुए हैं। आप एक जमीन बल्कि आसमानी सरजमीन में हैं। आप वादे की सरजमीन में हैं। आप देख सकते हैं क्योंकि आप अपने इर्द गिर्द सारे रास्ते जानते हैं। ओ मेरे खुदाया, जी हाँ, आप जानते हैं किसी खास मौके पर कैसी बातें करनी है। आप जानते हैं खेल का कैसे पंसा पलटा जाता है और इसी तरह आप जानते हैं कि हर एक चीज का क्या मतलब है। लेकिन रूल कुछ पाकिजगी और रास्तबाजी और खुदा की कुदरत को जान कर आता है और कैसे रूल कुछ काम करता है और वो क्या करता है। बेहतर तो है कि आप कलाम के पीछे खड़े रहें जो के रहनुमा है। देखें, क्योंकि आप इस रास्ते से पहले नहीं गुजरे। ठीक है, आप कहते हैं मैं तो बड़ा जहीन और बड़ा समझदार आदमी हूँ, मैंने कॉलेज से डिग्रियां हासिल की हैं। आपके लिए बेहतर है कि उन्हें भूल जाएं। जी हाँ जनाब, मैंने सेमिनरी की है। आपके लिए बेहतर है उसे भूल जाएं। जी हाँ, आपके लिए बेहतर है कि रहनुमा के पीछे खड़े रहें, उसे आने दें कि वो आपकी रहनुमाई करे क्योंकि वो रास्ते को जानता है। आप रास्ते को नहीं जानते क्योंकि आप इस रास्ते से पहले कभी नहीं गुजरे। ठीक है, मगर आप कहते हैं गुजरे हैं। देखें, वो गुजरे हैं। तो यीशु ने कहा, जो इस राह से गुजर चुके हैं ये निशानात उनमें होंगे। वो मेरे नाम से बुद्रुहों को निकालेंगे, नई नई जुबानें बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे या कोई हलाक करने वाली चीज पिएंगे तो उन्हें कुछ जर ना पहुंचेगा। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और बीमार शिफा पाएंगे। और ज्यादातर इसको रद्द करते हैं और इसका इनकार करते हैं और कहते हैं कि ये इल्हाम नहीं। वो रहनुमा की पैरवी नहीं कर रहे हैं, वो इंसान के बनाए हुए अकीदे की पैरवी कर रहे हैं। आपके लिए यही बेहतर है कि कलाम के पीछे ठहरे रहें क्योंकि आप जानते हैं कि आप इस रास्ते से पहले नहीं गुजरे। लेकिन अगर आप नए सिरे से पैदा हुए हैं और आप पाकिजगी से पैदा हुए हैं मगर फिर भी आप इस रास्ते से पहले नहीं गुजरे हैं, आप और अगर आप इस रास्ते से गुजरते हैं तो आपको पाकिजगी के जरिए आना पड़ता है क्योंकि ये एक नई सरजमीन है, नई जिंदगी है और नए लोग हैं। अब जब आप अपने कलीसिया में आएंगे और किसी को हाथ उठाए हुए जोर जोर से कहते हुए सुनेंगे, खुदा को जलाल मिले, हालेलुया, इस वजह से आप कहेंगे मेरे खुदाया, अरे ऐसा तो मेरी कलीसिया में कभी नहीं हुआ था, इसलिए मैं उठूंगा और बाहर निकल जाऊंगा। देखें, मोहतात रहें, कलाम के पीछे रहें और अब रहनुमा को अपनी रहनुमाई करने दीजिए। वो आपको पूरी सच्चाई की राह दिखाएगा और वो सारी बातें आप पर जाहिर करेगा जो मैंने तुमको बताई हैं। वो ये तुम पर जाहिर करेगा, वो आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। हकीकी रहनुमा ऐसा ही करेगा। बिशप के पास मत जाएं बल्कि रहनुमा के पास जाएं। किसी के पास भी ना जाएं बल्कि रहनुमा के पास जाएं। वही एक है जो आपकी रहनुमाई के लिए भेजा गया है, यही वो एक है जो ये करेगा। खुदा ने आपको एक रहनुमा मुहैया किया है, खुदा के मुहैया करदा रास्ते पर चलें। आज यही मसला है कि जो लोग कलीसिया में आते हैं वो कुछ देर के लिए बैठते हैं और फिर चले जाते हैं क्योंकि वो आदि नहीं हैं। मैं उस खातून की कदर करता हूँ जो एक रस्मी कलीसिया से आई जिसके लिए अभी दुआ हुई थी। खुदा उस खातून को शिफा देने जा रहा है। वो ये नहीं समझती थी, वो इसके मुतल्लिक कुछ नहीं जानती थी। वो अंदर आई और उसने कहा वो इसके बारे में कुछ नहीं जानती, लेकिन मैंने उस औरत को बताया कि वो आए और मुझसे मिले। वो तो एक किस्म की कमजोर और पसमांदा थी, लेकिन रहनमा उस औरत को मतवातर बता रहा था कि आगे बढ़ती जाए। उसके पास रहनमा था, बस यही बात है। देखा, क्योंकि ये तो रूल कुछ ही है जो हमारी इन बातों की जानिब रहनमाई करता है। देखें, खुदा का अपना ही मुहैया करदा एक तरीका है। क्या आपने कभी आपने ध्यान दिया कि जंगली बतखें और हंस जनूब की जानिब पेश कदमी क्यों करते हैं? ठीक है, अब याद रखें कि उस छोटी बतख ने भी वहीं तालाब के पीछे जन्म लिया था। वो नर बतख नहीं जानता था कि मशरिक, मगरिब, शमाल और जनूब किस तरफ हैं। वो कुछ नहीं जानता था, लेकिन वो जहाँ तालाब पर बैठा था वो वहाँ कनाडा के पहाड़ों में है। वो कभी भी अपने तालाब से बाहर नहीं गया, लेकिन वो एक रैबर ही पैदा हुआ था। उस छोटी नर बतख को रैबर ही पैदा होना था। और पहली बात, एक रात वहाँ पहाड़ों से होता हुआ एक बर्फ का तूफान आ गया। फिर क्या होता है? फिर उन पहाड़ों से होती हुई ठंडी हवा आती है। मैं अंदाजा कर सकता हूँ कि वो कैसे कांप रहा होगा और कह रहा होगा, माँ इसका क्या मतलब है? देखे, उस नर बतख ने इससे पहले इतनी सर्दी कभी नहीं महसूस की थी। उसने इर्द गिर्द का जायजा लेना शुरू कर दिया। वो तालाब के किनारे पर ध्यान देता रहा कि तालाब के किनारों पर बर्फ जमने लग गई है। वो ये नहीं जानता था, लेकिन वो तो बतखों के झुंड के लिए रहनमा बनकर पैदा हुआ था। जब उसके अंदर ऐसा होता है तो वो एकदम छलांग लगाकर तालाब के दरमियान आ जाता है। आप जो चाहें इसे कहें, हम इसे तहरीक कहते हैं, या आप इसे ये कह सकते हैं ओ जबिल्लत, या ये जो कुछ भी है, और वो ठीक तालाब के दरमियान उनको चलाने के लिए आ जाएगा और हवा में अपनी आवाज बुलंद करके कहेगा होंक 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 होंक, और हर एक बतख तालाब में उसके पीछे आ जाएगी। क्यों? इसलिए कि वो जानती हैं कि वो उनका रहनमा है, सिर्फ इस तरीके से कि उसने होंक की आवाज दी है। अगर तुरही की आवाज ठीक ना हो तो कौन खुद को लड़ाई के लिए तैयार कर सकेगा? ठीक है, कौन खुद को लड़ाई के लिए तैयार कर सकता है अगर तुरही की आवाज ठीक ना हो? ठीक है, अगर वो छोटी बतख ठीक आवाज ना देती तो फिर कौन खुद को उड़ने के लिए तैयार करता? वो छोटी बतख अपने छोटे घर से बाहर आ गई और जोर जोर से कहने लगी होंक 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 होंक, और हर एक बतख उसके पीछे आ गई, होंक 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 करेगी कि वो यहाँ हैं। जैसे एक खास जश्न का समा हो ठीक उस तालाब के दरमियान में कि ऊपर 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 जा रहे हों। थोड़ी ही देर के बाद वो महसूस करता है कि अब उसे जाना है, और वो उड़ जाता है और उस तालाब को छोड़ देता है। वो अपने छोटे परों को दुरुस्त करता है और फिर उस तालाब से उड़ जाता है, और वो हवा में उसके चौगिर्द 3 या 4 चक्कर लगाता है और फिर सीधा लुइसियाना में चला जाता है जहाँ वो जा सकता है। सारी बतखें उसके पीछे हैं और वो होंक 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 करता हुआ यहाँ आता है। क्यों? क्योंकि वो एक रहनमा है। आमीन। बतखें अपने रहनमा को जानती हैं, लेकिन कलीसिया अपने रहनमा को नहीं जानती। जी हाँ, वो जानता है क्या करना है। उन बड़ी बतखों पर निकाह करें जो अलास्का से कितार बांधे आती हैं, और हमेशा एक बूढ़ी नर बतख उनकी रहनमाई करती है, और वो उस नर बतख पर निगाहें रखे रखती हैं कि वाकई वो ठीक है। वो जानती है कि नर बतख किसके मुतल्लिक बात कर रही है। क्या आपने लुक मैगजीन में यहाँ इसके मुतल्लिक नहीं पढ़ा जो 4 साल पहले वाकया हुआ, कि एक बूढ़ी बतख एक मर्तबा वो नहीं जानती थी कि वो क्या कर रही है, और उसने बड़ी बतखों के एक गोल की रहनमाई की और उन्हें इंग्लैंड ले गई। ये ठीक है, वो सब बड़ी बतखें पहले कभी इंग्लैंड नहीं गई थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने रहनमा पर पहले कभी तवज्जो न दी थी, और वो बड़ी नर बतखें नहीं जानती थी कि वो कहाँ जा रही हैं, और अब वो सब बड़ी बतखें वहाँ उड़ती हैं, लेकिन वापस नहीं आ सकती। आज यही मसला बहुत सारी बड़ी बतखों के साथ भी है जो अभी तक उस हजूम में हैं। वो कहते हैं उस लुक मैगजीन में कहा गया कि उन बड़ी बतखों का झुंड वहाँ है और वो इंग्लैंड में चारों तरफ उड़ता है, लेकिन वो नहीं जानते कि वापस कैसे जाया जाए। यही मसला कुछ इन बड़ी बतखों के साथ भी है जिनको मैं जानता हूँ। आप भी एक बड़ी भीड़ में हैं और इसके लिए बहुत बड़ी इबादतें करते हैं, और इसी दौरान कोई बेदारी लाने वाला आता और मनादी करता है, लेकिन आप नहीं जानते कि आप कहाँ जा रहे हैं, और आप चारों अतराफ से जमा होते हैं क्योंकि आपके दरमियान एक नर बतख है जो आपकी रहनमाई करके तंजीमी रंग रैलियों तक लाया, ना कि खुदा के कलाम के पीछे। वापिस रुल कुछ के बपतिस्मे पर आए, और फिर हमें हैरत होती है कि हमारे दिनों में ये बेदारी क्यों नहीं है। देखें, आपको तुरही की ठीक आवाज़ को सुनना है, और वो आवाज़ खुशखबरी का नरसिंगा है जो खुदा के कलाम के हर लफ्ज की खुशखबरी को फूंक रहा है। کوئی عقیدہ نہیں نہ ہی کوئی تنظیم، لیکن صرف خدا کا کلام یعنی روح القدس، اور ایمان لانے والوں کے درمیان یہ نشان ظاہر ہوں گے، سمجھے؟ اور وہ اسی راہ پر چلتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک بوڑھے نر بطخ نے کہا چلو چلیں، اس نے ایک پورے جن کو مروا ڈالا۔ وہ کوشش کر رہا تھا کہ وہ ان سب کو رات کی تاریکی میں سے گزار کر لے جائے، وہ خود یہ نہیں جانتا تھا کہ کہاں جا رہا ہے، اور وہ سب وہاں پہاڑوں سے ٹکرا گئے، اور ان میں سے کچھ وہیں موقع پر ہلاک ہو گئے اور کچھ وہیں پڑے رہے۔ یقیناً اس لیے کہ انہوں نے کوئی غلط آواز کی پیروی کی تھی۔ وہ نر بطخ، اگر اس کے پاس کوئی خاص آواز ہوتی اور پھر اسے ہر کوئی جانتا، تو اس کے پاس چھوٹی بھیڑ کے لیے جشن کا سما ہونا تھا، اور وہ پھر جنوب کو چلے جاتے۔ وہ وہاں کیوں چلے جاتے؟ اس لیے کہ وہاں سردی نہیں۔ اب اگر خدا ایک بطخ کو اتنی عقل دیتا ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ کیسے سردی سے بچا جائے، تو اس کلیسیا کو کتنی عقل دینی چاہیے؟ اگر ایک بطخ یہ تحریک کے وسیلے کر سکتی ہے، تو پھر روح القدس کے متعلق کیا خیال ہے جو کہ کلیسیا میں ہے؟ تو کیا اسے ہماری رہنمائی پرانے رسم و رواج اور عقیدوں اور دوسری چیزوں سے کرنی چاہیے، یا ایک جلالی روح القدس کے بپتسمے کے وسیلہ سے جو نیکی، معرفت، صبر، دینداری کو لاتا ہے، یعنی روح القدس؟ یہی تو حقیقی رہنما ہے جو ہماری رہنمائی کرے گا۔ وہ کچھ نہیں کہے گا مگر صرف خوشخبری، یعنی خدا کا کلام۔ یقیناً آپ کو ایک رہنما کی ضرورت ہے۔ جب وہ مجوسی خدا کے متعلق کچھ نہیں جانتے تھے، تو وہ صرف جادوئی کرتب کرنے والے اور جادوگر تھے۔ وہ پورب میں تھے۔ آپ جانتے ہیں بائبل نے کہا ہم نے پورب میں اس کا ستارہ دیکھا ہے اور اسے سجدہ کرنے کے لیے آئے ہیں، اور وہ پچھم میں تھے اور انہوں نے پورب میں اس کا ستارہ دیکھا، یا پچھم میں دیکھا، وہ پورب میں تھے، ہم پورب میں تھے اور اس کا ستارہ دیکھا، سمجھے؟ ہم نے پورب میں اس کا ستارہ دیکھا، اور دیکھیں وہ پورب میں تھے، جب ہم پورب میں تھے ہم نے ستارہ دیکھا اور ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ میں تصور کر سکتا ہوں اور سمجھ سکتا ہوں جب وہ ساتھی جانے کی تیاری کر رہے ہوں گے، اور میں تصور کرتا ہوں اور میرا خیال ہے کہ ان میں سے ایک کی بیوی نے کہا ہوگا تم نے سب کچھ باندھ لیا ہے، لیکن تمہاری قابو میں لانے والی چھڑی کہاں ہے؟ اس نے کہا میں اس وقت جادوئی چھڑی کو استعمال نہیں کرنے جا رہا۔ اس کی بیوی نے کہا تو پھر کیسے تم پہاڑوں سے گزرو گے؟ یاد رکھیں انہوں نے تگریاس جھیل کو عبور کیا تھا اور بڑے آرام سے وہاں پہنچے۔ کیوں ان کو اونٹوں پر وہاں پہنچنے میں 2 سال لگے؟ وہ یہ کیسے کرنے جا رہے تھے؟ اس کی بیوی نے کہا ٹھیک ہے مگر تم نے جادوئی چھڑی نہیں لی ہے۔ اس نے کہا نہیں لی، تو پھر تم کیسے جا رہے ہو؟ میں خدا کے مہیا کردہ رستے سے جا رہا ہوں، اس ستارے کے پیچھے جا رہا ہوں جو میری اس بادشاہ تک پہنچنے میں رہنمائی کرے گا۔ یہ بات ہے، ہم نے اس کا ستارہ پورب میں دیکھا اور سارے راستے میں اس کی پیروی کی، اور پچھم میں آئے ہیں تاکہ اسے سجدہ کریں۔ وہ کہاں ہے؟ انہوں نے خدا کے مہیا کیے ہوئے راستے کی پیروی کی، اور تھوڑے عرصے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو رسم و رواج کے ماننے والے جن سے منسلک کر لیا، اور جب وہ یروشلم میں داخل ہوئے اور انہوں نے گلیوں میں ادھر ادھر جانا شروع کر دیا، اور یہ عمدہ لباس زیب تن کیے ہوئے لوگ کہہ رہے تھے وہ کہاں ہے، یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ ٹھیک ہے، یروشلم سربراہ تھا، یقیناً بڑی کلیسیا کو اس کے متعلق کچھ علم ہونا چاہیے۔ وہ کہاں ہے، یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ کیونکہ ہم نے پورب میں اس کا ستارہ دیکھا، ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں، وہ کہاں ہے؟ کیوں وہ وہاں فلاں فلاں پاسٹر اور فلاں فلاں سردار کاہن کے پاس گئے، مگر ان میں کوئی بھی اس کے متعلق نہیں جانتا تھا، کیونکہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ وہ اس کے متعلق نہیں جانتے تھے۔ لیکن وہاں باہر پہاڑی کی طرف گڈریوں کا ایک گروہ تھا، وہ اپنے وقت پر تھا، جی جناب، کیونکہ وہ خدا کے مہیا کیے گئے راستے سے آئے تھے، اس لیے وہ وہاں کھڑے رہے، اور اس نے فوراً کہا میں تم کو بتاؤں گا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں ایک بوٹ میٹنگ بلانی چاہیے۔ اور انہوں نے سنہیڈرن کونسل کو بلایا کہ آپ نے اس کے متعلق کوئی بات سنی ہے؟ نہیں، ہم اس کے متعلق کچھ نہیں جانتے۔ یہی بات بالکل آج ہے، وہ اس رہنما کے بارے میں کچھ نہیں جانتے کہ یہ روح القدس شفا دینے اور معمور کرنے اور بچانے کو دوبارہ آیا ہے۔ رہنما جس نے ہمیں بتایا کہ یہ ساری باتیں وقوع پذیر ہوں گی اور ہم ٹھیک ان کے درمیان میں ہیں، ایک دل کے خیالوں کو پرکھنے والا، لیکن وہ اس کے متعلق کچھ نہیں جانتے۔ وہ اسے ٹیلی پیتھی ذہن کو پڑھنا یا کچھ اور کہتے ہیں، وہ نہیں جانتے کہ اس کے متعلق کیا کہیں۔ بس آپ دیکھیں کہ وہ مجوسی جیسے ہی، یاد رکھیں جب یروشلم میں داخل ہوئے تو وہ ستارہ غائب ہو گیا، اور جیسے ہی آپ عقائد کو دیکھتے اور تنظیمی انسان پر نگاہ ڈالتے ہیں کہ وہ آپ کی خدا تک آنے میں رہنمائی کرے، تو پھر خدا کی مدد آپ کو چھوڑ جائے گی۔ لیکن جب وہ اس باغ دوڑ سے تھک ہار گئے اور ان لوگوں کو چھوڑ دیا، انہوں نے ان عقائد اور تنظیموں کو چھوڑ دیا جو کہ ان یہودیوں کی تھی، اور یروشلم سے باہر چلے گئے، تب وہ ستارہ دوبارہ ظاہر ہوا اور انہوں نے اسے پا کر بڑی شادمانی حاصل کی۔ उन्होंने दोबारा उस रहनुमा को देखा। हो ये ऐसे ही है, किसी रस्मी कलीसिया में जाना और फिर बेहतरी के लिए वापस आग पर आना। देखें, रहनुमा रहनुमाई कर रहा था, ये कितना मुख्तलिफ था। जी हाँ, हमने पूरब में उसका सितारा देखा और उसे सजदा करने आए हैं। यशुआ ने उन लोगों से कहा, अब तुम अहद के संदूक की पैरवी करो, क्योंकि तुम इस रास्ते से पहले कभी नहीं गुजरे। खुदा इजाजत नहीं देता कि अहद के संदूक को इधर उधर रखें, बल्कि ठीक जगह पर। फिर हर एक ने उसकी पैरवी की और ठीक यर्दन के पार चले गए। रूल कुछ के वसीले आज भी बिल्कुल यही बात है। जी जनाब, सिर्फ एक ही बात है जो हमें जाननी है कि आया ये रूल कुछ है या नहीं। हम उसके जहूर को देखते हैं और जहूर खुदा के कलाम को साबित करता है। अब कुछ ज्यादा अरसा नहीं हुआ कि भाइयों के एक ग्रोह ने खून और तेल लिया, और ये ठीक अगरचे वो उसे इस तरीके से करना चाहते थे, लेकिन वो तरीका मेरे लिए हमायत याफ्ता नहीं था। उसे कलाम से साबित होना चाहिए था, समझे? जैसा खुदा ने कहा वैसा ही साबित होता है, तो फिर ये दुरुस्त है। मगर उन्होंने कहा, क्योंकि आपने इस तेल को अपने हाथ में लिया, यही सबब है कि आपने रूल कुछ को ले लिया है। अब मैं इसकी हमायत नहीं कर सकता, समझे? नहीं, मैं ईमान नहीं रखता कि इस तेल में कोई बात है कि इसके साथ कुछ किया जाए। और अगर ये लहू शिफा और निजात देने जा रहा है, तो फिर यीशु मसीह के लहू का क्या हुआ? और अगर यही तेल शिफा देता है, तो फिर यीशु मसीह के कोड़ों से मार खाने का क्या हुआ? समझे? मैं रहनुमा के पास आना पसंद करता हूँ, जो आपको कलाम की सच्चाई के पास लाता है। और फिर आप जानते हैं कि आप कुछ नहीं हैं, और फिर आप भरोसा रखने को तैयार हो जाते हैं। ये दुरुस्त है, तब आप उड़ने की तैयारी करते हैं। जी जनाब, जी हाँ। क्यों? इसलिए क्योंकि उस रहनुमा ने इसे आपके लिए हकीकत बना दिया है। मेरे पास यहाँ एक हवाला है, मैंने ये हवाले दिए थे, लेकिन ये एक मैं पढ़ना चाहता हूँ। दूसरा पत्रस, पहला बाब, 21वीं आयत। क्योंकि नबुवत की कोई बात आदमी की ख्वाहिश से कभी नहीं हुई, बल्कि आदमी रूल कुछ की तहरीक के सबब से खुदा की तरफ से बोलते थे। कैसे नबुवत आई? ना के इंसान की ख्वाहिश से और ना ही तंजीमी अकायद से, लेकिन खुदा की मर्जी के जरिए, जब मुकद्दस आदमी रूल कुछ की तहरीक से बोलते थे। रूल कुछ हमेशा से खुदा की तरफ से रहनुमा है। वो रूल कुछ ही था जो आग के सतून में था। वो रूल कुछ ही था। हर शख्स जानता है कि वो मसीह था। मूसा ने मिस्र को फरामोश कर दिया और मसीह के लिए लानतान उठाने को मिस्र के खजानों से बड़ी दौलत जाना। वो रहनुमा मसीह था, ठीक है। जब वो यहूदी वहाँ बाहर खड़े कह रहे थे, ठीक है, तू कहता है कि तू क्यों, तेरी उम्र तो अभी 50 बरस की भी नहीं, और तू कहता है तूने इब्राहिम को देखा? यीशु ने कहा, इससे पहले इब्राहिम पैदा हुआ मैं हूँ। मैं ही वो हूँ, वो जो मूसा को आग के सतून की शक्ल में जलती हुई जाड़ी में मिला। जी जनाब, वो खुदा मुजस्सम हुआ था, ना के कोई तीसरा कनूम। वही शख्स एक मुख्तलिफ दफ्तर में था। ना के तीन खुदा हैं, बल्कि एक खुदा के तीन दफातर हैं। ये बिल्कुल दुरुस्त है। अब ठीक है, ये कलाम मुकद्दस है। हमेशा जब भी खुदा मुहैया करता है, तो वो फिर बेहतरीन चीज मुहैया करता है। जब खुदा ने अपनी कलीसिया को एक साबित शुदा रास्ता मुहैया किया, तो उसने उसे बेहतरीन चीज मुहैया की। जब खुदा ने आदम और हवा को बागे अदन में दिया, तो उसने उन्हें अपना कलाम दिया। तुम इस कलाम के पीछे ठहरना तो तुम महफूज हो, लेकिन अगर तुम कलाम से हटते हो, तो उसी दिन जिस दिन तुमने इसे खाया, तुम मरे। खुदा ने कभी भी अपने तरीके को तब्दील नहीं किया, और ना ही कभी शैतान ने अपने आप को तब्दील किया। शैतान ने कैसे आदम और हवा को घेरा, वो आज भी लोगों को घेरता है। क्यों? कैसे? पैस के जरिए वो कोशिश करता है कि उन्हें घेरे। अब ये मुनासिब नहीं है कि खुदा ऐसा करे। हो, जबकि खुदा ने ऐसा कह रखा है। शैतान ने कहा, खुदाए पाक वाकई ही ये नहीं करेगा। यकीनन खुदा करेगा, क्योंकि उसने कहा और वो ऐसा ही करेगा। और यही बात लोग आज कहते हैं, ओ अब इंतजार करें, तुम अब ईमान नहीं रखते। मैं गिरजे जाता हूँ, दे यकी अदा करता हूँ, और मैं ये करता हूँ, मैं कोई दूसरा काम करता हूँ, तो क्या खुदा मुझे वहाँ से बाहर फेंकने जा रहा है? जब तक कोई इंसान नए सिरे से पैदा ना हो, वो खुदा की बादशाही को नहीं समझ सकता। देखें, कोई माफी नहीं, ठीक है, बेचारे गरीब आदमी की और बेचारी गरीब औरत की अच्छी रूह है, लेकिन सिर्फ एक ही तरीका है जिससे वो कभी खुदा को देख सकते हैं, और वो है नए सिरे से पैदा होना। बस यही सारी बात है। मुझे परवाह नहीं कि वो कितना छोटा, कितना बूढ़ा, कितना जवान और उन्होंने क्या किया है। चाहे वो कितनी ही बार गिरजे जा चुके हों, चाहे वो कितनी ही तंजीमों को जानते हों, चाहे उन्होंने कितने ही अकायद को जबानी सुनाया हो, आपको नए सिरे से पैदा होना है क्योंकि आप ठीक बुनियाद पर नहीं है कि आपकी इब्तदा हो। ये बिल्कुल दुरुस्त है। इस तरह आपने देखा कि आपको एक रहनुमा की जरूरत है और आपकी पूरी सच्चाई जानने में रहनुमाई करेगा और सच्चाई कलाम है। वो आपकी रहनुमाई करेगा और वो हमेशा ऐसा ही करता है। खुदा कभी भी तब्दील नहीं होता क्योंकि वो लामहदूद है और वो जानता है कि क्या बेहतरीन है। वो हर जगह मौजूद है, वो आलमुल गायब है और वो सब कुछ है। ये दुरुस्त है और ये खुदा है, इसलिए खुदा कभी तब्दील नहीं होता। ठीक है, वो आपको मजबूत करने वाला है उस राह में जिसमें वो आपकी रहनुमाई कर रहा है। रुलकुस यानी रहनुमा बिल्कुल उसी कलाम में कायम करने वाला है जो कि खुदा सिखा रहा है। अब देखें, लूका ने रहनुमा के वसीला से रहनुमाई पाई थी तो उसने कहा सारी दुनिया में जाओ और सारी खल्क के सामने मुनादी करो, और जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो नजात पाएगा और जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा, और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मोजजात होंगे। वो बदरूहों को मेरे नाम से निकालेंगे, नई नई जुबानें बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, अगर कोई हलाक करने वाली चीज पिएंगे तो उन्हें कुछ जरर ना पहुंचेगा, वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और वो ठीक हो जाएंगे। बाइबल ने इसी तरह कहा कि वो हर जगह अपने रहनुमा की बदौलत रहनुमाई पाकर चले गए। आप जानते हैं, उन्होंने मोजजात के साथ कलामे मुकद्दस की मुनादी की। ये क्या था? ये रहनुमा साबित कर रहा था कि ये सच्चाई है, ये खुदा का इंतजाम है, इसी तरीके से इसने सारे काम को किया, ये उसका मंसूबा है। खुदा इस मंसूबे को तब्दील नहीं करता क्योंकि वो लामहदूद है। आमीन। वो इसको तब्दील नहीं कर सकता क्योंकि वो खुदा है। मैं तब्दीली कर सकता हूँ क्योंकि मैं इंसान हूँ। आप तब्दीली कर सकते हैं क्योंकि आप एक मर्द और औरत हैं। लेकिन खुदा इसको तब्दील नहीं कर सकता। मैं महदूद हूँ, मैं गलती कर सकता हूँ और गलत बात कह सकता हूँ, हम सब ऐसा कर सकते हैं, लेकिन खुदा नहीं कर सकता क्योंकि वो खुदा है। उसका पहला फैसला ही कामिल है। खुदा का जमीन पर अमल करने का यही तरीका है और बिल्कुल इसी तरीके से उसने हर दफा अमल किया। अगर वो जमीन पर किसी गुनहगार को नजात के लिए बुलाता है तो वो इसी एक चीज की बुनियाद पर उसे निजात देता है। अगली मर्तबा जब एक गुनहगार आता है तो खुदा बिल्कुल उसे इसी तरीके से निजात देता है। या फिर उसका पहला अमल गलत था जब उसने पहली मर्तबा अमल किया। आमीन। मैं खुदावंद से मोहब्बत करता हूँ और मैं जानता हूँ ये सच्चाई है। मैं 53 साल का हूँ और 35.5 साल से इंजील की मुनादी कर रहा हूँ, मगर मैंने खुदावंद को कभी भी नाकाम नहीं देखा। मैं दुनिया के चौगिर 7 मरतबा चक्कर लगाकर इसे आजमा और देख चुका हूँ, तमाम इकसाम के मजाहब में और बाकी सब कुछ में, जैसे कि 1 मरतबा 5 लाख लोगों के सामने। ये कभी भी नाकाम नहीं हुआ। मैं किसी किताब में से आपसे बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं अपने जाती तजर्बे से आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि खुदा अपने कलाम के पीछे खड़ा होता और कलाम को इज्जत देता है। अब अगर आपके पास किसी किस्म का अकीदा है तो आप उस पर बेहतर गौर कर सकते हैं, लेकिन रुलकुस आपको वापस खुदा के कलाम पर लाता है। मुकद्दस यूहन्ना पहले बाब की पहली आयत में उसने कहा वो कलाम है, वो रहनुमा है। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था, और कलाम मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा। ओ मेरे खुदाया, पत्रस ने रहनुमाई पाकर इमाल 2:38 में कहा था कि रुलकुस को कैसे हासिल करना है। उसने कहा तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले, तब रहनुमा तुम्हें यहाँ से ले लेगा। जी हाँ, यही काम है जो करना है। पहले अपने गुनाहों से तौबा करनी है और अपनी बेइतकादी से, ताकि आप उन चीजों से अपना एतमाद हटा दें। तौबा करें और बपतिस्मा लें, तब रहनुमा आपको इस मकाम से ले लेगा। देखें, ये काम आपका है। ये आपका फर्ज है कि तौबा करें, ये आपका फर्ज है कि बपतिस्मा लें। तब रुलकुस का काम है कि वो आपको इस मकाम से ले ले और आपकी नेकी और मार्फत और परहेजगारी और सबर और दीनदारी और ब्रादरना उल्फत और मोहब्बत से रहनुमाई करेगा, और फिर रुलकुस आप पर मोहर कर देगा। और देखें, फिर आप खुदा का एक मुकम्मल कदोकामत हो जाते हैं, खुदा का एक हकीकी बंदा और खुदा की एक हकीकी बंदी, फिर मसीह में लंगर अंदाज हो जाते हैं। मसीह में लंगर अंदाज होना, मैं इस बात से मोहब्बत करता हूँ। जी हाँ, मरकस ने रुलकुस की रहनुमाई से यकीनन मरकस 16 बाब को लिखा था। यूहन्ना ने भी हदायत पाई थी जब उसने मुकाशवा को लिखा था। यूहन्ना ने उसी रहनुमा से हदायत पाई थी। उसने भी रहनुमा से हदायत पाकर कहा, जो कोई भी इस नबूवत की किताब में एक लफ्ज बढ़ाए या एक लफ्ज निकाले तो खुदा उस जिंदगी के दरख्त और मुकद्दस शहर से उसका हिस्सा निकाल डालेगा। अब कैसे आप खुदा के कलाम में कुछ बातों को तब्दील कर रहे हैं और फिर भी कहते हैं कि आपने रुलकुस से हदायत पाई है? ऐसा मत सोचें कि वो ये करता है। नहीं जनाब, वो ऐसा नहीं करता। वो मेरी जिंदगी में मेरा रहनुमा है, उसने जिंदगी में मेरी रहनुमाई की है। वही एक है जिसने जिंदगी में मेरी रहनुमाई की और वो मेरी जिंदगी है। खुदावंत के बगैर मेरे पास जिंदगी नहीं है, खुदावंत के अलावा मैं कुछ भी नहीं हूँ। वो मेरे सब कुछ में मेरा सब कुछ है। मुसीबत की घड़ियों में उसने मुझे संभाला, गुजरे हुए कल में उसने मुझे बरकत दी और आज भी बिल्कुल वैसा ही है। और मैं क्या तवक्को कर सकता हूँ, यही कि वो हमेशा तक यकसा है, उसके नाम की स्ताइश हो। आमीन। जी हाँ जनाब, उसने ये वादा किया था और वो इसे पूरा करेगा। वो मेरी जिंदगी है, वो मेरे सब कुछ में मेरा रहनुमा है। मैंने खुदावंत पर भरोसा रखा है। मुझ पर कुछ सख्त मुसीबतें आईं, मैं जहाँ भी जाता हूँ उस पर भरोसा रखता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप भी ऐसा ही करें। अगर आप औरतें कपड़े धोने जाती हैं तो उस पर भरोसा रखें। अगर आप अंदरूनी शहर जाती हैं तो उस पर भरोसा रखें। मैं सोचता था कि मैं एक जंगल के बारे में अच्छी समझ रखने वाला इंसान हूँ। आप जानते हैं कि मैंने बेशुमार शिकार किए हैं। मैंने सोचा कि मैं जरा मजबूत और बेजर हूँ और कोई शख्स भी, आप भी मुझे नुकसान नहीं पहुँचा सकते। मेरी वालिदा आधी इंडियन थी और मैं उसे मोहब्बत करता था। ओ मेरे खुदाया, आप मुझे जंगल में खोया हुआ नहीं पा सकते क्योंकि मैं जानता हूँ कि कहाँ पर हूँ। अपने हनीमून के बाद मैंने अपनी बीवी को बताया कि मैंने उससे एक किस्म की चालाकी की थी कि तुम जानती हो प्यारी, ये हमारे लिए बेहतर होगा कि हम अक्टूबर 23 को अपनी शादी करें, क्योंकि खुदावन ने तब ही मुझे ये करने को बताया था। मैंने सोचा अब एक छोटे से हनीमून के लिए मैंने कुछ पैसे बचा रखे हैं और मैं उसे नागरा आबशार के पास ले जाऊंगा और वहाँ से एड्रोंडक में थोड़ा सा शिकार भी खेल लूंगा, समझे। और मैंने बिली और उसको इस काम के लिए ले लिया। बिली उस वक्त बहुत ही छोटा बच्चा था, बस मैंने उसको ले लिया और इसी तरह शिकार पर जाने का भी एक प्रोग्राम बना लिया, आप जानते हैं। बस इस तरह मैंने सोचा कि ये काम करना अच्छा होगा और बस मैंने उसे ले लिया। और फिर और मैंने मिस्टर डेंटन को खत लिखा जो कि वहाँ का इंतजाम करने वाला था और हमें एरिकेन पहाड़ों के ऊपर से जाना था। मैंने कहा मिस्टर डेंटन, मैं वहाँ आ रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस बर्फबारी में आपके साथ रीछ का शिकार करूँ। और उसने कहा ठीक है बिली, आ जाओ। उसने कहा कि मैं फला फला तारीख को वहाँ हूँगा। ठीक है, मैं और मेरी बीवी और बिली एक दिन पहले ही वहाँ पहुँच गए और बस वहाँ झोंपड़ी बंद पड़ी थी। वहाँ एक छोटा सा पिछली जानिब दरख्त झुका हुआ था जहाँ भाई फ्रेड सोथमैन और मैं खड़े थे। और इस बात को गुजरे ज्यादा वक्त नहीं हुआ और रुलकुश को मैंने वहाँ खड़े देखा। जर्द माइल रोशनी जाड़ी के चारों तरफ घूम रही थी और भाई फ्रेड ठीक वहाँ खड़े थे। रुलकुश ने कहा एक तरफ आ जाओ, मैं तुमसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। उसने कहा कल मोहतात रहना, उन्होंने तेरे लिए एक जाल बिछाया है। और मुझसे कहा होशियार रहना। क्या ये बात दुरुस्त है भाई फ्रेड? और मैं वर्मोंट में गया और मैंने उस रात ये बात सैकड़ों लोगों को बताई। मैंने कहा यहाँ मेरे लिए एक जाल बिछाया गया है और मैं इसे देखने जा रहा हूँ, मैं नहीं जानता ये अब कहाँ पर है। और अगली ही रात रुलकुश आया और ये वहाँ था और उसने कहा यहाँ वो जाल यहाँ बिछाया गया है। जी हाँ जनाब, और रुलकुश ने मुझे हदायत दी कि क्या करना है। और ओ मेरे खुदाया, ये बिल्कुल ठीक है। ओ आप में से ज्यादातर लोग ये जानते हैं ये क्या था। मेरे पास अभी भी इस बात को बताने का वक्त नहीं है, लेकिन वहाँ उस मकाम पर उस वक्त खड़े हुए उस दिन सर्दी शुरू हो गई थी। मिस्टर डेंटन अगले रोज आ रहा था। मैंने कहा तुम जानती हो प्यारी, ये शानदार बात होगी कि अगर मैं एक नर हरण का शिकार करके घर ले आऊं। मैंने कहा मैंने ये कुछ पैसे बचा रखे थे जिनसे हमने शादी कर ली है। और मैंने कहा अगर मैं आज छोटा सा शिकार कर लाऊंगा तो ये सर्दी में हमारा खाना हो जाएगा। और उसने कहा ठीक है बिली, चले जाओ। उसने कहा अब तुम्हें याद है कि मैं इन जंगलों में पहले कभी नहीं आई, उसने ऐसा ही कहा था। और वो तकरीबन 25 मील पहाड़ों से अंदर थी, आप जानते हैं। और उसने कहा मैं इन जंगलात के बारे में कुछ भी नहीं जानती। और उसने कहा इस तरह। मैंने कहा ठीक है, अब तुम्हें याद है कि मैंने 2 साल पहले उन 3 रीछों को मारा था जो कि बिल्कुल यहाँ पहाड़ की चोटी के पीछे इस जानिब थे। मैंने कहा अब मैं एक नर हिरन ले आऊंगा और कुछ रीछ ले आऊंगा। और मैंने कहा ये सर्दी में हमारा खाना हो जाएगा। ठीक है, और आप जानते हैं कि ऐसा कहना बड़ा अच्छा लगता है। हमने ब्लैक बैरियां तोड़ी हुई थी और अपने लिए उस सर्दी में कोयले खरीदे हुए थे। इस तरह तब हमने उन ब्लैक बैरियों को फरोख्त कर दिया था। मेडा और मैं उन ब्लैक बैरियों को एक शाम चुनने के लिए गए थे जब मैं अपने काम से घर वापस आया था। बस तब मैंने कहा ठीक है, मैं अपनी बंदूक लेकर जा रहा हूँ, वहाँ नीचे जा रहा हूँ। मैंने कहा क्योंकि वहाँ नीचे बहुत सी हरनियाँ होती हैं और मैं एक को तलाश कर लूंगा। और मैंने कहा तुम जानती हो, मैंने कहा तब जैसे ही मैं शिकार कर लूंगा। और मैंने कहा हम मैं थोड़ी ही देर में वापस आ जाऊंगा। उसने कहा ठीक है। बस जब मैंने चलना शुरू किया था तो मौसम थोड़ा बेहतर था, और आप न्यू हैम्पशायर के लोगों में से कोई भी जो वहाँ न्यू इंग्लैंड में से आया है जानता है कि इसका क्या मतलब होता है जब धुंध नीचे आना शुरू होती है या पहाड़ों में कहीं भी आती है, तो फिर आप नहीं जानते कि आप कहाँ पर हैं। बस यही बात है, आप अपने से आगे अपने हाथ को भी नहीं देख पाते। बस तब मैंने थोड़ा थोड़ा नीचे की जानिब इस तरह भरना शुरू किया, नीचे आया और मैं हमवार पहाड़ी की चोटी से गुजरा और चला गया, और मैंने एक चीते पर गौर किया। आप इस मुल्क के अंदर इस जानवर को यही पुकारते हैं, हम मगरिब में हम इस जानवर को एक बिल्ली नुमा जानवर कहते हैं, और वो लोग इसे वहाँ एक पहाड़ी शेर कहते हैं, लेकिन ये एक ही जानवर है, लेकिन हकीकत में ये एक बड़ा बिल्ली नुमा जानवर है, बिल्कुल बिल्ली की तरह, तकरीबन 9 फीट लंबा और वजन तकरीबन 150 या 200 पाउंड के करीब होता है। वो रास्ते में से गुजरा और मैंने जल्दी से अपनी बंदूक में गोली डाली, इतनी जल्दी भी नहीं कि उस वक्त उसे मार डालूं। ठीक है, मैं इस चीते का ताकुब करते हुए पहाड़ी की उस तरफ जा निकला। आप जानते हैं उन पत्तों को हिलता देखकर जहाँ से चीता गुजरता था मैं उसे सुन सकता था। उसके चार पांव थे, मैं जानता था कि वो दो पांव वाला जानवर नहीं है, उसके चार पांव थे। मैं जानता था कि वो एक हरन नहीं है, क्योंकि हरन दो पांव पर छलांग लगाता है, और वो चीता आसानी से गायब हो गया। बिल्ली जैसे जानवर ऐसा ही करते हैं, आप जानते हैं, वो इस तरह का था, और एक रीछ जब वो चलता है तो वो अपने पांव घुमाता है, और बस मैं जानता था कि इसे जरूर ही एक चीता होना चाहिए, और वो एक दरख्त की आड़ में था और मैं उसे नहीं देख सकता था। मैंने सिर्फ चलते हुए उसकी झलक देखी, लेकिन तब तक वो जा चुका था, और मैंने वहाँ पत्तों को हिलते जुलते देखा था। आप जानते हैं वहाँ ऊपर पहाड़ की चोटी पर और बिल्कुल इस तरह नीचे, और मैं नहीं देख रहा था कि बादल मतवातर आ रहे थे, और आप जानते हैं कि जब इस तरीके से धुंध नीचे आ रही हो। मैंने गलती की थी कि इस चीते का ताकुब करते हुए एक बड़ी वादी से होते हुए दूसरी खतरनाक जगह निकल गया था। मैंने सोचा कि मैं थोड़ी ही देर में इसका शिकार कर लूंगा। मैंने एक जगह देखी और मैं दौड़कर एक ऊंची जगह पर चला गया और बिल्कुल इस तरह चारों तरफ देखा और चारों तरफ झांकना शुरू किया ताकि उसको देखूं और करीब से उसकी आवाज़ सुनूं। इसलिए मैं नीचे उतर गया और दोबारा उसे ताकना शुरू कर दिया। अगर आप सुन सकें तो वो झाड़ियों से होता हुआ मुझसे आगे झाड़ियों में जा रहा था। देखें, वो दरख्तों से चिपक चिपक कर जा रहा था ताकि मैं उसका पीछा ना कर सकूं। देखें, वो होशियार हो गया था और वो दरख्तों पर चढ़कर एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर छलांगे लगा रहा था। तब वो जान गया कि मैं उसका पीछा नहीं कर सकूंगा। ओ, मैंने सोचा हो चलो जैसा भी हो, और मैं वापस उस वादी से होते हुए चल पड़ा तो मुझे एक नर रीछ की मौजूदगी का एहसास हुआ। मैंने सोचा लड़के अब की बार मैं इसे मार गिराऊंगा, ये अच्छा है। मैंने दोबारा महसूस किया और मैं थोड़ा और आगे बढ़ गया, और मैंने वहाँ उसके हर किस्म के निशान और दूसरी चीजें देखने की कोशिश की, और मुझे कोई चीज भी दिखाई ना दी। मैं फिर वापस मुड़ गया और पहाड़ के पीछे दूसरी तरफ चला गया, और तब मैंने गौर करना शुरू किया। धुंध बढ़ती जा रही थी और मैंने दोबारा महसूस किया उसकी खुशबू हवा में कहीं थी। मैंने कहा नहीं, अब क्या हुआ था? हवा तो इस रास्ते से आ रही थी, और मैं और रीच के आने का एहसास तो मुझे उस नीचे के रास्ते से हुआ था, और मैं इस तरफ से गुजरा और हवा उस दूसरी सिम्मत से आ रही थी, इसलिए मैं वापस वहाँ पर ही गया जहाँ मैंने पहली मरतबा रीच की खुशबू सूंघी थी, और ये खुशबू फिर वहीं से सूंघी। और वापस रास्ते में आते हुए उस वादी में से गुजरते हुए मैंने देखा कि झाड़ियाँ हिल रही थी, और जब मैं करीब गया किसी काली सी चीज ने हरकत की, और मैंने सोचा कि वो यहाँ है। मैंने जल्दी से बंदूक में गोली भरी और बिल्कुल खामोशी से खड़ा हो गया, और जब ये बाहर निकला तो ये एक बड़ा नर हरन था, वाकई एक बड़ा नर हरन। मैंने सोचा किसी भी तरह से मैं तो यही चाहता था, और उस नर हरन को मार गिराया। मैंने सोचा ठीक है, मैंने तो इस तरफ ध्यान ही ना दिया था कि उस वक्त मैंने हरन को लिया और जबा कर दिया, और फिर देखा। मैंने अपने हाथ साफ किए और अपनी छुरी को वापस उसकी जगह पर रखा, और मैंने सोचा खुदा की स्ताइश हो, शुक्रिया खुदावंद यीशु, तूने सर्दी में मेरे लिए गोश्त मुहैया किया, खुदा की हमद हो। और मैंने अपनी बंदूक संभाली और मैंने सोचा अब मैं यहाँ से ठीक वापस उस तरफ जाऊंगा। मैंने कहा यहाँ देख लड़के, तूफान आ रहा है, मेरे लिए बेहतर है कि यहाँ से निकलूं और सीधा वापस मेडा और उनके पास जाऊं। मैंने कहा मुझे जल्दी निकलना पड़ेगा, और मैंने अपने लाल कोट के बटन खोले और ऊपर उसी जगह की तरफ गया, और मैं ऊपर उसी जगह के चौगिर्द दौड़ते हुए इस तरह से जा रहा था। पहली बात जो आप जानते हैं, मैंने सोचा ओ मेरे खुदाया, मैं अपना मोड़ कहाँ छोड़ आया हूँ। आंधी पहले ही आ गई थी, दरख्त आपस में लिपट रहे थे। मैंने सोचा मैंने अपना मोड़ कहाँ खो दिया है। मैं चारों तरफ गया, मैं जानता था कि मैं सीधा हैरिकन पहाड़ की जानिब जा रहा हूँ, और मुझे कुछ हुआ और मैं रुक गया और मैं पसीने में शराबोर हो रहा था। मैंने सोचा कि मसला क्या है। मैं आधे घंटे या 45 मिनटों से घूम रहा हूँ और उस जगह को तलाश कर रहा हूँ जहाँ से मुझे मुड़ना है, और मैंने निगाह ऊपर की तो सामने मेरा हरन लटका हुआ था। मैं ठीक बिल्कुल उसी जगह पर था। मैंने सोचा ठीक है, अब मैं क्या करूँ। ठीक है, मैंने दोबारा चलना शुरू कर दिया। मैंने सोचा मैं इस दफा ये मोड़ तलाश कर लूंगा, क्योंकि मैंने जरा इस पर ध्यान नहीं दिया था। और मैंने कदम कदम पर हर तरफ देखना शुरू कर दिया और देखता रहा, और मैं तलाश करता रहा। और बादल आना शुरू हो गए और मैं जानता था कि अब बर्फानी तूफान रास्ते में आ जाएगा, क्योंकि धुंध बढ़नी शुरू हो गई थी। और तब मैंने ध्यान देना शुरू किया। मैंने सोचा कि मैं कुछ और आगे बढ़ूंगा। मैं आगे 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 बढ़ता गया और मैंने सोचा ठीक है, ये कुछ अजीब जगह लगती है, इस तरह कि जैसे पहले मैंने इस मकाम को देखा हो। और मैंने निगाह की तो मेरा हरन सामने लटका हुआ था, समझे। आप जानते हैं कि मैं किस राह पर था। इंडियन लोग इसे मौत की वादी कहते हैं। देखें, जैसे आप एक दायरे में चल रहे हों और उसी के चौगिर्द घूम रहे हों। ठीक है, मैंने सोचा मैं तो खुद भी एक अच्छा रहनुमा था जो कभी खोया हुआ नहीं था। देखें, जंगल में कोई भी नहीं था जो मुझे बताता, और मैं जानता था कि मेरा रास्ता इर्द गिर्द ही है, समझे। मैंने दोबारा चलना शुरू कर दिया। मैंने कहा अब मैं ये गलती नहीं करूंगा, और मैं दोबारा वापस आ गया और मैं गहरी वादी में थोड़ा सा बढ़ा। तब हवा चलना शुरू हो गई। वो मेरे खुदाया, बर्फ हर तरफ फैल चुकी थी और तकरीबन हर जानिब अंधेरा हो गया था। और मैं जान गया कि मेडा उस रात जंगल में मर जाएगी। वो नहीं जानती थी कि कैसे खुद की हिफाजत करे। और बिली की उम्र उस वक्त तकरीबन 3 या 4 साल के करीब थी, और वो बहुत ही छोटा बच्चा था। और मैंने सोचा वो क्या करेंगे। ठीक है, और मैं इस जगह से दूर हूँ, वरना मैं कुछ घास फूस बिछा लेता। मैंने सोचा कि मैं एक चिपटी जगह में हूँ और मैं कुछ भी नहीं देख सकता, क्योंकि हर तरफ धुंध ही धुंध छाई हुई थी। अब मैं इसके चौगिर्द घूमे जा रहा था। आम तौर पर अगर कोई मेरे साथ होता तो मैं एक जगह तलाश कर लेता और वहाँ ठहर जाता और फिर इंतजार करता जब तक तूफान गुजर न जाता, एक दिन या दो दिन, और फिर बाहर आ जाता और हरन के टुकड़े करता और अपनी कमर पर रखता और उस जगह के अंदर चला जाता और गोश्त खाता और तूफान के मुतालिक भूल जाता। लेकिन तब आप ऐसा नहीं कर सकते जब आपकी बीवी और बच्चा जंगल में पड़े हुए नेस्तो नबूद हो रहे हों, समझे। बस मैंने सोचना शुरू किया कि मैं क्या करूं। बस मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ गया और मैंने सोचा अब इंतजार करूं। जब मैंने उस पहली घाटी को पार किया तो आंधी सीधा मेरे मुंह पर आ रही थी, इसलिए मुझे जरूर ही इस तरफ आना चाहिए था, और मैं इस तरफ हो गया। और मैं उस खतरनाक रास्ते में हैरतजदा था, लेकिन मैं नहीं जानता था कि मैं कहां जा रहा हूं। मैंने कहा ओ, और मैं थोड़ा घबरा गया था, और मैंने सोचा बिल इंतजार करो, तुम खोए हुए नहीं हो। और अपने आप को धोखा देने की कोशिश की, लेकिन आप अपने आप को धोखा नहीं दे सकते। नहीं नहीं, आपका जमीर आपको बता देता है कि आप गलत हैं। ओ, आप ये कहने की कोशिश करते हैं ओ कि मैं निजात याफ्ता हूँ, क्योंकि मैं गिरजे जाता हूँ। आप फिक्र मत करें, आप इंतजार करें जब तक कि मौत ना आ जाए, और फिर आप जानेंगे कि ये फर्क है। आपका जमीर आपको बताता है, कोई चीज आपके अंदर है जो आपको बताती है कि आप गलत हैं, समझे। आप जानते हैं अगर आप हलाक हो जाएंगे तो फिर आप पाक खुदा से नहीं मिल सकते। जैसे हमने गुजरी रात में उसे देखा, यहाँ तक कि मुकद्दस फरिश्तों को भी उसकी हजूरी में खड़े होकर मुंह पर पर्दा करना पड़ता था, तो आप यीशु मसीह के खून के पर्दे से बाहर होकर कैसे खड़े हो सकते हैं। मैंने सोचा ओ, अब मैं रास्ता तलाश कर लूंगा, और मैंने दोबारा चलना शुरू कर दिया। और मैंने ऐसा पाया जैसे मैं किसी चीज को कुछ कहते सुन रहा हूँ। तब मैं घबरा गया और मैंने सोचा अब अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मैं अगले हिस्से की तरफ जा रहा हूँ। ऐसा अक्सर वो इंसान करता है जो खोया होता है, वो जंगल के किसी भी हिस्से में चला जाता है। तब वो अपनी ही बंदूक लेगा और खुद को गोली मारेगा, या फिर किसी खाई में गिर जाएगा और अपनी टांग तोड़वा लेगा और वहाँ पड़ा रहेगा और वहाँ मर जाएगा। इसलिए मैंने दिल में सोचा अब मैं क्या करने जा रहा हूँ। बस मैंने दोबारा चलना शुरू कर दिया और मैंने सुना कि कोई चीज कह रही है कि मैं मुसीबत के वक्त तेरा मददगार हूँ, लेकिन मैंने चलना जारी रखा। मैंने सोचा अब मैं जानता हूँ कि अब मैं थोड़ा बेहतर हालत में हूँ। मैं एक आवाज को सुन रहा हूँ जो मुझसे गुफ्तगू कर रही है, और मैं जा रहा था और मैं बढ़ता गया। सीटी जैसी आवाज आ रही थी, आप जानते हैं। मैंने सोचा अब मैं खोया हुआ नहीं हूँ, लेकिन आवाज कुछ यूं थी, क्या तुम जानते हो कि इस वक्त तुम कहाँ पर हो लड़के, तुम्हारे साथ क्या मसला है, तुम नहीं खो सकते, क्योंकि तुम एक बेहतरीन शिकारी हो और तुम खो नहीं सकते। खुद ही से बातें किए जा रहा था, और आप जानते हैं खुद को अपने ही जरिए धोखा दे रहा था। आप खुद को धोखा नहीं दे सकते। उसी रास्ते में हल्की सी आवाज मुड़ते हुए कह रही थी कि लड़के तुम जानते हो तुम खो चुके हो। मैंने बढ़ना जारी रखा, ओ मैं नहीं खोया हुआ, मैं ठीक हो जाऊंगा और मैं अपना रास्ता तलाश कर लूंगा। देखने में ये चीजें मजाक लगती हैं। आंधी करीब आ गई और बर्फ पड़ना शुरू हो गई, छोटी दलियानुमा बर्फ जिसे हम कहते हैं, जैसे थूक नीचे आ रही हो। मैंने सोचा मेरी बीवी और मेरा बच्चा, मैं नहीं पहुंच सकता। मैंने सोचा ओ मेरे खुदाया। दोबारा मैंने किसी को ये कहते हुए सुना, मैं मुसीबत के वक्त तेरा मददगार हूँ। तब मैं अंजीले मुकद्दस का एक मुनाद था और ठीक यहाँ टेबरनेकल में मुनादी करता था। बस मैंने सोचा ठीक है, मगर मैं क्या कर सकता हूँ। मैं रुक गया और चारों तरफ देखा और अब धुंध और भी नीचे उतर चुकी थी। मैं ये वो लम्हा था तब कुछ नहीं किया जा सकता था। मैंने सोचा ओ मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने सोचा जनाब मैं जिंदा रहने के लायक नहीं हूँ। मुझे अपने आप पर बहुत ही ज्यादा एतमाद था। मैंने सोचा कि मैं एक शिकारी हूँ, मगर मैं एक शिकारी भी नहीं हूँ। और भाइयों मैंने हमेशा खुदावंद पर ही भरोसा किया। निशानेबाजी में मैंने एक मकाम पाया और माहीगिरी में मैं बड़ा कमजोर था, लेकिन मैंने हमेशा खुदावंद पर भरोसा रखा। निशानेबाजी में मैं एक कमजोर निशानेबाज हूँ, लेकिन खुदावंद ने इस काम में मुझे दुनिया में एक रिकॉर्ड बनाने दिया, समझे। हरनों को मैंने 700 और 800 गज के फासले से मार गिराया। मैंने एक बंदूक ली और 35 शिकार मार गिराए, वो भी एक निशाना बगैर जाया किए। आप कहीं भी ये बात पढ़ सकते हैं, अगर आप पढ़ना चाहें तो, समझे। वो मैं न था बल्कि खुदावंद ही था जिस पर मैं भरोसा करता हूँ। जब मैं वहाँ था मैंने दिल में सोचा मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने कहना जारी रखा, तब आवाज करीब से करीब तर आती रही कि मैं मुसीबत के वक्त तेरा मददगार हूँ, मैं तेरा मददगार। मैंने सोचा क्या ये खुदा है जो मुझसे बात कर रहा है। मैंने अपनी टोपी उतार दी जो मैं अपनी सैरोतफरी के दौरान पहनता था, जिसके चारों तरफ लाल रुमाल लिपटा हुआ है। मैंने उसे नीचे रख दिया। मैंने अपने कोट को उतारा, ये गीला था, और मैंने अपने कोट को नीचे रखा, अपनी बंदूक एक दरख्त के साथ लटका दी। मैंने कहा आसमानी बाप, अब मैं खुद को पीछे कर रहा हूँ, मैं एक आवाज़ सुन रहा हूँ जो मुझसे गुफ्तगू कर रही है, क्या ये तू है। मैंने कहा खुदावंद मैं तेरे सामने तस्लीम करता हूँ कि मैं कुछ नहीं, ना ही शिकारी हूँ। मैं कुछ नहीं, मैं अपना रास्ता तलाश नहीं कर सकता, तुझे मेरी मदद करनी पड़ेगी। मैं जिंदा रहने के लायक भी नहीं हूँ और वो काम किए जा रहा हूँ जो कभी कर चुका हूँ। यहाँ आया और सोचे जा रहा हूँ कि मैं इसके मुतल्लिक बहुत कुछ जानता हूँ जो कभी खो गया हो। खुदावंद मुझे तेरी जरूरत है। मेरी बीवी एक अच्छी खातून है, मेरा बच्चा, मेरा छोटा बच्चा जिसकी माँ पहले ही कूच कर चुकी है और ये कोशिश कर रही है कि उसकी माँ बने, और मैंने अभी उससे शादी की है और वो यहाँ जंगल में एक बच्चे के साथ है। आज रात वो दोनों मर जाएंगे। इस आंधी से अब दर्जा हरारत 0 से नीचे चला जाएगा और वो नहीं जानते कि कैसे जिंदा रहा जाए। आज रात वो मर जाएंगे। ऐ खुदा उन्हें ना मरने दे, मुझे उनके पास ले जा, इस तरह मैं उन्हें देख सकूं कि वो दोनों मर न जाएं। मैं खो गया हूं, मैं खो गया हूं। ऐ खुदा मैं अपना रास्ता तलाश नहीं कर सकता, क्या तू मेहरबानी से मेरी मदद करेगा और मेरी खुदगर्जी के तरीके को माफ कर दे। मैं तेरे बगैर कुछ भी नहीं कर सकता, तू ही मेरा रहनुमा है। ऐ खुदावंद मेरी मदद कर। मैं दुआ करके खड़ा हो गया और कहा आमीन। मैंने अपना रुमाल ऊपर उठाया, अपने कोट को भी ऊपर उठाया, अपनी टोपी पीछे अपनी कमर पर लटका ली और अपनी बंदूक को भी उठा लिया और मैंने कहा अब मैं खुद ठीक उस राह पर चलूंगा जिसको मैं अब बेहतरीन तरीके से समझता हूँ कि किस तरह चलना है, और मैं सीधा एक ही रास्ते पर जाऊंगा क्योंकि मैं कहीं दायरे में चलता रहा हूँ और मैं नहीं जानता कि कहाँ चलता रहा हूँ। लेकिन खुदावंद अब मैं उसी राह पर चलूंगा जो तू मुझे बताएगा, क्योंकि तू ही मेरा रहनुमा है। और मैंने इस तरफ चलना शुरू कर दिया। मैंने कहा ये वो रास्ता है और मुझे खुद ही इस बात पर भरोसा करना पड़ा और मैंने इस रास्ते पर चलना शुरू कर दिया और मैं इस रास्ते पर सीधा जा रहा था और मैं अपने रास्ते को तब्दील नहीं कर रहा था, मैं सीधा उसी रास्ते पर जा रहा था। मैं जानता था कि मैं ठीक हूँ और मैं उसी रास्ते पर जा रहा था। अगर मैं उसी रास्ते पर मजीद और आगे जाता तो मैं आगे कनाडा में पहुँच जाता, समझे। तब ठीक उसी घड़ी में मैंने महसूस किया कि किसी ने अपना हाथ मेरे कंधे पर रख दिया और मुझे छुआ। मैंने ऐसे महसूस किया कि ये हाथ जैसे किसी इंसान का था। बस मैंने जल्दी से उसकी तरफ मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई भी ना खड़ा था। मैंने सोचा वो क्या था। यहाँ बाइबल मेरे सामने रखी हुई है, खुदा ही मेरा रहनुमा और मुनसिफ है जो कि यहाँ खड़ा है। मैंने ठीक ऊपर निगाह उठाई और ठीक पीछे उस रास्ते में वो धुंध पीछे हट गई और मंजर साफ हो गया, जब तक कि मैं हैरिकेन के पहाड़ों की चोटी को ना देख सका। मैं तो उस रास्ते से ठीक दूर जा रहा था, बेहतरीन शिकारी होने के बावजूद मैं तो उस रास्ते से दूर ही जा रहा था, और तब उस शाम और भी देर हो जाती। मैं जल्दी से मुड़ गया और खुद को इस सिमत सीधा किया। मैंने अपनी टोपी उतार ली और अपने हाथों को बुलंद कर दिया और कहा ऐ खुदावंद तूने मेरी रहनुमाई की, क्योंकि तू मेरा रहनुमा है। और मैं चल पड़ा और मुझे सीधा सतून जैसी जगह पर जाना था और सब चीजों को वहाँ से देख रहा था। देर और देर हो गई, तब अंधेरा छा गया और हरन मेरे सामने से कूदते हुए जा रहे थे और सब कुछ। मैं कुछ नहीं सोच सकता था सिवा इस बात के कि खुद को ठीक उस रास्ते पर रखूं जो ठीक ऊपर उस पहाड़ पर जाता है। और मैं जानता था अगर मैं उस पहाड़ की चोटी पर जा सका जिस पर मिस्टर डेंटन और मैंने उस मौसमी बहार में टेलीफोन की तार लगाने में उसकी मदद की थी। और हमने टेलीफोन की तार को हैरिकेन के पहाड़ से तकरीबन सारे ही रास्ते को जो नीचे तक 3.5 या 4 मील का रास्ता था उस रास्ते पर ठीक नीचे कैंप तक तार को बिछा दिया था और ये तार ठीक नीचे तक खींची गई थी। लेकिन बर्फ इस तार पर पड़ी हुई थी, आप नहीं बता सकते थे कि वो तार कहाँ है, समझे। और आंधी चल रही थी और बर्फ वगैरह गिर रही थी और अंधेरा हो चुका था और बर्फ का बड़ा तूफान था। और उस दौरान आप जा रहे हों तो आप नहीं बता सकते कि इस वक्त आप कहां पर हैं। ठीक, सिर्फ एक ही काम था जो मैं जानता था कि मैं करूं। ज्यादा अंधेरा हो जाने के बाद मैं नहीं जानता था कि मैं क्या करूं। मैं सिर्फ ये जानता था कि मैं एक ही रास्ते पर जा रहा था जो ठीक पहाड़ पर था, क्योंकि मेरा अंदाजा था कि वो ऊपर पहाड़ पर जाता है और वो बुर्ज ठीक पहाड़ की चोटी पर था और मुझे उस तक जाने में 6 मील चलना था। जरा सोचें, वो धुंध पीछे हट गई और 6 मील तक उस धुंध में एक सुराख बन गया जब तक कि मैं उस तार को देख न सका। और तब मैंने अपनी बंदूक इस हाथ में पकड़ ली और उस हाथ से ऊपर तार को पकड़ लिया, क्योंकि मैंने तार को दरख्तों के ऊपर से इस तरह नीचे ले जाते हुए नीचे झोंपड़ी तक टेलीफोन की तार खींची थी ताकि वो अपनी बीवी से बातचीत कर सके और तब वहाँ से ऊपर पहाड़ पर गुफ्तगू कर सके। और मैं उस तार की मदद से जो पड़ी हुई थी जा रहा था और मैंने अपने हाथों को इस तरह ऊपर किया हुआ था और कह रहा था, ऐ खुदा मुझे इस तार को पकड़े रहने देना। चलते हुए उस तार को पकड़ने से मेरे हाथ पर जख्म हो गया था और मैं बड़ा थक गया था। मैं मुश्किल से भी उस तार को पकड़ नहीं सकता था और मैं एक हाथ नीचे कर लेता था और मैं बंदूक को तब्दील करके दूसरे हाथ में रख लेता, एक दो कदम पीछे कर लेता। इस तरह मैं पूरी उम्मीद हो गया था कि इस तार को नहीं छोड़ूंगा। तब अपना हाथ ऊपर कर लिया और चलना शुरू कर दिया और चलता गया। देर हो रही थी, अंधेरा बढ़ रहा था और आंधी चल रही थी। हो जब मैं किसी टहनी को पकड़ लेता तो कहता, हो ये वो नहीं है, ये वो नहीं है। हो उसने मुझे आवाज दी, उसने मुझे कोई मशकूक आवाज नहीं दी। इसके बाद जब मैं तैयार ही होता था कि हाथ ऊपर करूं तो मेरा हाथ किसी चीज से टकरा जाता। हो मेरे खुदाया, जब मैं खो गया था तलाश करता ही रहा और तब मैंने उस तार को पकड़ लिया और मैंने अपनी बंदूक नीचे गिरा दी और अपने सर से टोपी उतार ली और मैं वहाँ खड़ा हो गया। मैंने कहा, ऐ खुदा जब तुझे खोकर पाते हैं तो कितना अच्छा महसूस होता है। मैंने कहा, ठीक इस तार के आखिरी सिरे तक मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगा, मैं इसी तार को पकड़े रहूंगा, यही मेरी रहनुमाई करेगी और मुझे ठीक सीधा जमीन पर उन प्यारों के पास ले जाएगी, ठीक वहाँ जहाँ वो पड़े हुए हैं। मेरी बीवी और मेरा बच्चा वाकई नहीं जानते थे कि मैं कहां पर हूं, ना ही ये जानते थे कि कैसे आग जलाई जाए, ना ही ये जानते थे कि क्या करें। और आंधी चल रही थी और दरख्तों की डालियां खिसककर टूट रही थी और मुझ में हिम्मत नहीं थी कि उस तार को हाथ से जाने दूं। मैंने उस तार को थाम लिया जब तक कि उसने मेरी रहनुमाई करके मुझे ठीक उन प्यारों में ना पहुंचा दिया जो जमीन पर थे। ये एक बहुत ही भयानक तजर्बा था और एक नहायत ही अजीम तजर्बा भी था कि अपनी राह को तलाश करना, लेकिन ये उसका आधा भी नहीं है। एक दिन गुनाह में मैं खोया हुआ था। मैं एक कलीसिया के बाद दूसरी कलीसिया में गया, कुछ तलाश कर रहा था। मैं सेवंथ डे एडवेंटिस्ट कलीसिया में गया, उन्होंने कहा सब्बत को मानो और गोश्त मत खाओ। मैं बैप्टिस्ट कलीसिया फर्स्ट बैप्टिस्ट कलीसिया में गया, उन्होंने कहा सिर्फ खड़े हो जाओ और लोगों को बताओ कि तुम खुदा के बेटे यीशु मसीह पर ईमान रखते हो और तुमको बपतिस्मा दिया जाएगा, बस यही कुछ, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन एक दिन एक छोटी कोयले की छत के नीचे मैंने अपने हाथों को उठा लिया, मैंने किसी चीज को थाम लिया, या मैं कहूँगा किसी ने मुझे थाम लिया था। ये जिंदगी की डोरी थी यानी रहनुमा, और उसने उस वक्त तक मेरी रहनुमाई की और महफूज रखा और मैं उस तार को अपने हाथ से छोड़ देना नहीं चाहता था। मैंने अपने हाथ उस रहनुमा के हाथ में दे रखे हैं और तंजीमें चाहे जितने भी अकीदे लाएं या जो कुछ भी, मगर मैं हमेशा रहनुमा को थामे रहूंगा, क्योंकि वो सब जो जमीन पर थे और वो सब जो आसमान में हैं मेरे लिए वो कीमती हैं। इस तार के आखिरी सिरे पर वो मुझे बचाकर यहाँ तक लाया और बाकी रास्ते में भी मैं उसी पर भरोसा रखूंगा। जब वो यानी रुलकुस आएगा और वो तुम्हारी रहनुमाई करेगा और तुम्हें सारी सच्चाई की राह दिखाएगा। दोस्तों आज मैं जहाँ हूँ वही मुझे लाया है। जो मैं हूँ उसी ने मुझे बनाया है। मैं खुशी से उसका तारुफ आपके साथ करा सकता हूँ। सिर्फ वही ऐसा रहनुमा है जिसके मुतालिक मैं जानता हूँ। वो यहाँ जमीन पर भी और ऊपर आसमान पर भी मौजूद है। जब मैं जंगलों में शिकार के लिए जाता हूँ तो वो मेरा रहनुमा है। जब मैं मछलियाँ पकड़ने जाता हूँ तो वो मेरा रहनुमा है। जब मैं किसी शख्स से बातचीत करता हूँ तो वो मेरा रहनुमा है। जब मैं अंजील की मुनादी करता हूँ तो वो मेरा रहनुमा है। जब मैं सोता हूँ तो फिर भी वही मेरा रहनुमा है। और जब मैं मर जाऊंगा तो वही दरिया के किनारे खड़ा होगा और वो उस रास्ते से गुजरने में मेरी रहनुमाई करेगा। मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरा आसा और तेरी लाठी वो मुझे दुरुस्त करेंगे और दरिया को पार करने में मेरी मदद करेंगे। आए हम दुआ करते हैं। आसमानी बाप, मैं रहनुमा के लिए तेरा बहुत ही शुक्रगुजार हूँ जो मेरी रहनुमाई करता है। ओ बाप, जब कभी कभी मैं इसे अपने गिर्द नहीं सुन पाता तो मैं डर जाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो मेरे करीब रहे क्योंकि मैं नहीं जानता कि किस वक्त मुझे दौड़कर उस दरिया के पार जाना है। मैं चाहता हूँ कि वो मेरे करीब तर हो। खुदावंद, मुझे कभी न छोड़ना। मैं तेरे बगैर बोल नहीं सकता। मैं तेरे बगैर मनादी नहीं कर सकता। मैं जंगलों में शिकार नहीं कर सकता। मैं झील के किनारे मछली भी नहीं पकड़ सकता। मैं अपनी गाड़ी नहीं चला सकता। खुदावंद, मैं तेरे बगैर कुछ भी नहीं कर सकता। तू ही मेरा रहनुमा है। मैं आज रात कितना खुश हूँ इस जमात को बताकर कि तूने कैसे इन सारे कामों में मेरी रहनुमाई की और कैसे तूने मुझे बुलाया है। किसी रोज मैं सोच रहा था, कुछ ज्यादा अरसा नहीं गुजरा क्योंकि मेरे घर वालों ने कुछ गलत काम किए थे और बाहर गली में खड़े हुए कोई मुझसे बातचीत नहीं करना चाहता था और मैं रफाकत के लिए उदास था। कोई भी शख्स मेरे साथ कोई भी ताल्लुक नहीं रखना चाहता था। उन्होंने कहा, इसका बाप शराबी है। और खुदावन, देख, कोई भी मुझसे बात ना करता था मगर मैं लोगों से मोहब्बत करता था। लेकिन एक दिन जब मैंने उस डोरी को थाम लिया, अब ऐ खुदावन, मैं सोचता हूँ कि इस मुकाम को छोड़कर थोड़े आराम के लिए जंगल में चला जाऊँ। उसने क्या किया? मेरी कोई शोहरत नहीं, ना ही कोई तालीम है, मुझ में कुछ भी नहीं है। लेकिन खुदावंद, ये तू ही था। खुदावंद, ये तू ही था। तूने मुझे सीफर से हदफ दिया। तूने मुझे बड़ी मछली पकड़ने दी क्योंकि तू जानता था कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ। तूने मुझे माँ और बाप दिए। तूने मुझे भाई और बहनें दी। तूने मुझे मेरी सेहत दी। तूने मुझे मेरी बीवी दी। तूने मुझे खानदान दिया। खुदावंद, तू ही मेरा रहनुमा है। मुझे अपना हाथ थामे रहने दीजिए और मुझे कभी भी छुड़ाने ना दीजिए। अगर मेरा एक हाथ थक जाएगा तो मैं हाथ तब्दील करके दूसरे से थाम लूंगा। खुदावंद, मेरी मदद करें। और अब खुदावंद, हर एक जो यहाँ पर मौजूद है बिल्कुल उसी जिंदगी की डोरी को थाम ले। रुलकुस, जो कि हमारी जिंदगी है और जिंदगी देने का वसीला है, और यही हम सब की उस तरफ शादमानी की सरजमीन में रहनुमाई करेगा जहाँ जिंदगी की मेहनत और मशक्कत खत्म हो जाएगी और हमारे काम जो जमीन पर करते हैं तमाम हो जाएंगे। और फिर वहाँ हम बूढ़े नहीं होंगे और ना ही कमजोर लोग होंगे और ना ही थका देने वाली रातें होंगी और ना ही रोना और मिन्नत समाजत होगी और ना मजबा पर बुलाने जैसा कुछ होगा, लेकिन हम सिर्फ वहाँ हमेशा के लिए जवान होंगे। बीमारियाँ और रंजो अलम भी ना होगा और ना ही वहाँ गुनाह होगा और हम खुदा की पाकीजगी में रहेंगे जो तमाम जमानों में लगातार खुदा की अब्दियत के जरिए आई है। ऐ बाप, इसे मंजूर कर। और अब ऐ बाप, अगर यहाँ आज रात जिसने कभी उस जिंदगी की डोरी को नहीं थामा, अब हो सकता है वो इस डोरी को दुरुस्त तौर पर तलाश कर ले और हो सकता है कि उस शख्स की रूह कुछ रहनुमाई करे। और मैं अपने हाथ तेरे कलाम पर रख कर अपने दिल से कह सकता हूँ कि तेरा कलाम हमेशा ही दुरुस्त है। मैंने बहुत मर्तबा गलती की है, लेकिन तेरा रूह हमेशा ठीक है। खुदावंद, उसे मेरे साथ रहने दे और मुझे उसके साथ रहने दे और बख्श दे कि दूसरे लोग जो यहाँ हैं आज रात, जो रुलकुस को नहीं जानते, हो सके तो ये लोग भी उस ला तब्दील हाथ को थाम लें ताकि वो भी रहनमाई को पा सके और हम में से कुछ उस दरिया की दूसरी जानिब आने के लिए आ रहे हैं। उन्हें उस सुबह भी उस धुंध ही में से जाना होगा। वो पुराना समुन्दर भी मोजे मार रहा होगा और पुराना यर्दन भी किनारों को तोड़ रहा होगा और मौत हम में से जिंदगी को खत्म कर रही होगी। लेकिन ए खुदा, मैं खौफजदा ना होऊंगा। मैंने एक लंबा अरसा गुजार कर ये तय किया है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि हेलमेट को उतार लूँ जैसे एक जंगजू चारों तरफ घूमता है, पीछे मुड़कर रास्ते को देखता है और देखता है कि कहां तक उस डोरी ने मेरी रहनुमाई कर रखी थी, और सारे बियाबान को देखता है कि मैं इसके जरिए आया हूं, और रास्ते में हर कांटेदार झाड़ी और पत्थरों की हर नोक को पीसते हुए आया हूं, लेकिन उस डोरी को थामे रखा है। और जैसे तूने कहा, शायर ने बयान किया, कुछ पानियों के जरिए और कुछ सैलाबों के जरिए, कुछ गहरी मुसीबतों के जरिए, लेकिन सब कुछ खून के जरिए। और मैं उस पुरानी तलवार को आज फिर लेना चाहता हूँ जो कि यहाँ मौजूद है, और जिसने रास्ते में मेरी हिफाजत की, उसको म्यान में रख कर चलाऊंगा। ए बाप, इस सुब कश्ती को पार भेज दे, मैं घर आ रहा हूँ। खुदावन तू वही होगा, तूने ये वादा किया है, और तू कभी नाकाम नहीं हो सकता। अब हर एक को बरकत दे जो यहाँ मौजूद है, अगरचे वो नहीं जानते कि इस डोरी को कैसे पकड़ा जाए, और कभी इसे छुआ तक भी नहीं। हो सकता है कि मुकद्दस हाथ अभी उठ खड़े हों, चाहने वाले हाथ, ख्वाहिश रखने वाले हाथ इस जिंदगी की डोरी को छू लें, जो इन लोगों की, इनके दिलों की ख्वाहिश के मुताबिक रहनुमाई करे और मुकम्मल सलामती और मुतमीन होकर मसीह में आराम पाएं। अपने झुके हुए सरों के साथ क्या कोई है कि अपने हाथ को उठाए और कहे, मुझे ले ले, मेरे हाथ को थाम ले। हो खुदा आपको बरकत दे। ए बेश कीमत खुदावंद, जब रास्ता सुनसान जगह से जा रहा हो और मर मिटना करीब हो, और जब मेरी जिंदगी तकरीबन खत्म ही हो गई हो, तब मैं दरिया पर खड़ा हूँगा, तू मेरे कदमों की रहनुमाई करना, मेरे हाथ को थामना और मेरा हाथ पकड़ लेना, बेश कीमत खुदावंद, और उस राह पर मेरी रहनुमाई करना। क्या यहाँ कोई और है जो अपने हाथ उठाए और कहे, खुदावंद आज रात मैं चाहता हूँ, मैं महसूस करता हूँ, उस जिंदगी की डोरी को छूना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इस बात को महसूस करूँ कि मसीह ने मेरे गुनाह मुझे माफ कर दिए हैं, और मैं चाहता हूँ कि मुझे इस घड़ी में नया मखलूक होना चाहिए। खुदावंद आपको बरकत दे। क्या कोई और भी है जो कहे, खुदावंद मुझे छूने दे, मैंने खुद को खो दिया। बहन, खुदा आपको बरकत दे। मैंने खुद को खो दिया और खुदावंद तुझ ही में मैंने इसे पा लिया है। खुदा आपको बरकत दे, और खुदा आपको बरकत दे, ये दुरुस्त है। खुदावंद मैंने खुद को खो दिया, मुझे खुद को भूल जाने दे। भाई, खुदा आपको बरकत दे। मैंने, बहन, खुदा आपको बरकत दे। मुझे मेरे सब इल्म से खोने दे। बहन, खुदा आपको बरकत दे। इंसान की बनाई हुई तरतीब पर भरोसा मत करें, सिर्फ रहनुमा की पैरवी करें, वही आपको पूरी सच्चाई की राह दिखाएगा। मेरी रहनुमाई कर खुदावंद यसु, मेरी रहनुमाई कर। वहाँ पीछे, खुदा आपको बरकत दे। हो कितने ही हाथ ऊपर उठे हुए हैं जो निजात चाहते हैं। अब इस दौरान हम मजबा यहाँ है, लेकिन आपको मजबा पर बुला नहीं सकते क्योंकि यहाँ हर तरफ लोग खड़े हुए हैं, लेकिन वो ठीक यहाँ मौजूद है। आप अच्छे और बुरे को जानते हैं। जब आपने अपने हाथ उठाए तो फिर आपके दिल में कुछ हुआ था। यीशु ने कहा, जो कोई मेरा कलाम सुनता और मेरे भेजने वाले पर ईमान रखता है, हमेशा की जिंदगी उसमें है। क्या आप इस बात का मतलब समझ गए? तो फिर हाउस यहाँ पानी से लबालब भरा हुआ है, बपतिस्मे के लिए काफी वक्त होगा। आए हम दुआ करें। हमारे आसमानी बाप, आज रात ये छोटा सा पैगाम धीमी आवाज के जरिए दिया गया, और रूल कुछ जरूर ही इसे इस जगह देना चाहता था, और ये वहीं गया जहाँ उसका इरादा था। और खुदावंद आज रात यहाँ बतेरे हैं, 15 या 20 लोगों ने अपने हाथों को उठा रखा है, इसलिए कि उन लोगों को रहनुमा की जरूरत है, क्योंकि वो महसूस करते हैं कि ये खुद को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते रहे हैं। वो ये कहने की कोशिश करते रहे हैं कि वो बिल्कुल ठीक थे, लेकिन अंदर गहराई में वो जानते थे कि वो ठीक नहीं हैं। लेकिन खुदावंद, वो तुझे टटोलना चाहते हैं, वो रहनुमा को चाहते हैं, वो उस निशान को चाहते हैं। तू कभी भी बस काफी हो गया नहीं कहता, वो इस सफर को करने के लिए निशान चाहते हैं। वो नहीं जानते कि वो कैसे जाएं, कोई नहीं जानता जो इन लोगों को वहाँ ले जाए, सिर्फ तू ही खुदावंद वाहिद है जो जानता है। वो आ रहे हैं खुदा के मुहैया करदा रहनुमा यानी रुलकुस के लिए, क्योंकि वो अपने हाथों को उठाए हुए हैं। ए रुलकुस और रहनुमा, इन लोगों पर उतर आ, हर गुनाह माफ कर दे, इनकी खताओं को माफ कर दे, और आज रात इन लोगों को मसीह के बदन में ले चल, जहां वो खुदा को उस डोरी के बहाव के जरिए चलते हुए महसूस कर सकें, जो इन लोगों की यर्दन पर और यर्दन को पार करके वादे की सरजमीन में रहनुमाई कर सके, ताकि ये लोग सीधे कलाम के पीछे चलें। कलाम मुकद्दस ने फरमाया, तौबा करो और फिर यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो, ताकि ये लोग फिर किसी दूसरे तरीके से बपतिस्मा लेने की कोशिश ना करें, और ये लोग हमेशा कलाम के पीछे चलें, क्योंकि वही है जो रहनुमाई करेगा। क्योंकि हमें इसी कदम से ऊपर चढ़ना है ताकि हम रहनुमा को थाम लें। खुदावंद ये मंजूर फरमा कि ये लोग तेरे ही हों। अब ये तेरे हाथ में सजे हुए हैं, कोई इंसान इनको छीन नहीं सकता। मेरा ईमान है कि तू इन्हें बचाए हुए लोगों की तरह लेगा। मेरा ईमान है क्योंकि उन्होंने अपने हाथ उठा रखे हैं, वो खुद ऐसा नहीं कर सके, बल्कि उनके अंदर कोई चीज है जिसने उन्हें ऐसा करने को कहा। ये तू ही है रुलकुस और रहनमा। वो देखते हैं कि अब वो घड़ी करीब है, धुंध जमीन के ऊपर छा रही है, बड़े बड़े अकीदे और दूसरी चीजें इकट्ठी हो रही हैं और कलीसियाएं आपस में इतिहाद करके इकट्ठी हो रही हैं। और ऐ खुदा, कैसे वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सारी अजीब चीजें उनको यहाँ पर ही छोड़नी पड़ेंगी और फिर वो अलास्का चले जाएंगे, वो सब चीजें जो उनके लिए खतरनाक हैं, मगर हमारे लिए नई नहीं है, बल्कि अजीम रहनमा ने कलाम के रास्ते पहले ही ये बातें हम पर जाहिर कर रखी हैं। हम तो सिर्फ इसके उस हिस्से के जरिए गुजर रहे हैं। खुदा बाप, आज रात तूने इन लोगों से कलाम किया और मैंने इन लोगों को तुझे दे दिया। अब जैसे कि ये कलाम की फतह की निशानी है यीशु के नाम में। अब ए बाप, यहाँ मंबर पर रुमाल पड़े हुए हैं, ये बीमार लोगों के लिए हैं, कुछ छोटे बच्चों के लिए, हो सकता है कुछ माओ के लिए, कुछ बहनों के लिए, कुछ भाइयों के लिए, यहाँ तक के इनमें कुछ बालों को लगाने वाली छोटी सुइयां भी लगी हुई हैं। और अब मैंने इन पर हाथ बढ़ा दिया है। अब हमने बाइबल में सीखा है कि वो लोग पालूस के बदन से कपड़े और रुमाल छुआ कर ले जाते और बीमारों पर रखते और वो शिफा पा जाते और लोगों में से नापाक रूहें निकल जाती। अब हम महसूस करते हैं कि खुदावंद पालूस एक इंसान था, वो सिर्फ एक इंसान था, लेकिन वो रुलकुस से मसा शुदा था जो कि उसमें था, जिसने उन रुमालों को बाबरकत बना दिया था और लोगों का ईमान था कि पालूस तेरा रसूल है। अब पालूस को तो तूने हमसे ले लिया, लेकिन रहनमा को नहीं, वो अब भी यहाँ मौजूद है। और ऐ खुदावन, मैं दुआ करता हूँ कि तू इन रुमालों को बरकत दे ताकि रुलकुस इस मकाम पर इन लोगों की रहनुमाई करे, ताकि ये मुकम्मल तौर पर अपने आप को तेरे हवाले कर दे। हमें दोबारा बताया गया कि जब इसराइली अपने रहनुमा की पैरवी कर रहे थे और जब वो ठीक यर्दन पर आए, ठीक बैरे कुलजम पर, और वहाँ पर रहनुमा ने उन लोगों को हदायत की और वो उसी राह में रुक गए, किस लिए? ताकि अपना जलाल जाहिर करे। और जब सारी उम्मीदें दम तोड़ चुकी, तब खुदा ने आग के सतून में से होकर नीचे देखा और यहाँ तक कि वो पुराना मुर्दा समंदर डर गया, पीछे थम गया और बनी इसराइल के लिए एक रास्ता बन गया ताकि वादा की सरजमीन में दाखिल हो जाएं। ऐ हकीकी खुदावन, तू अब तक वही खुदा है। शायद ये लोग मसीही हैं, शायद ये अपने फर्ज की राह में दुरुस्त हैं, लेकिन वो यहाँ इस जगह में जहाँ बीमारियों ने इन लोगों को घबराहट में मुब्तला किया हुआ है, आज रात यीशु के लहू में होकर नीचे निगाह डाल ताकि शैतान डर जाए और पीछे मुड़ जाए और तेरे बच्चे गुजरकर अच्छी सेहत के वादे को पहुँच जाएं। ऐ बाप, इसे मंजूर कर, यीशु मसीह के नाम में मैं इन लोगों को अपना बदन जानकर भेजता हूँ। मैंने इस जमात को तेरे सामने उठाया उस ईमान के जरिए जो तूने मुझे दिया, ताकि खुदा के जलाली मजबा से जो पीछे आसमान में है जुड़ जाएं, जहां बीमारी की हर ख्वाहिश, जो कुछ भी इनके पास है ये गलत है, और जो कुछ भी उन्होंने कहीं भी अपनी जिंदगियों में गलत किया है, ऐ खुदा इन्हें पाक कर, इन्हें अपना बना। ऐ बाप, इन्हें शिफा दे, और वही कुदरत जिसने यीशु को कब्र में से जिंदा किया, इनके फानी बदनों को भी जिंदा करे और मसीह में इन्हें नया मखलूक बनाए। खुदावंद, इन्हें अच्छी सेहत और कुवत अता कर ताकि ये तेरी खिदमत करें। ऐ खुदावंद, मुझे भी याद रख, मैं तेरा खादम हूँ, खड़े होकर दुआ करने में मेरी मदद कर। और मैं दुआ करता हूँ कि रुलकुस हमारी रहनुमाई करे और हमें इस्तेमाल करे और उस दिन तक हमारी रहनुमाई करे जब तक हम यीशु मसीह को रूबरू ना देखें, जब उसकी जलाली आमद हो और हम हवा में उड़कर बादलों में उसका इस्तकबाल करेंगे। हम मसीह के नाम में ये मांग लेते हैं, आमीन। मैं उसे प्यार करता हूँ। मैं, क्या आप उसे मोहब्बत करते हैं? क्योंकि उसने मुझसे पहले प्यार किया और मेरी नजात कलवरी पे खरीदी। अब अगर आप एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करते जिसको आपने देखा है, तो फिर खुदावन से कैसे मोहब्बत करेंगे जिसको आपने देखा ही नहीं। इसलिए अब जब हम गाते हैं मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, तो आइए अपने साथ वाले से दिली तौर पर मोहब्बत से हाथ मिलाएं। मैं उससे प्यार करता हूँ, भाई नेवल, खुदावंद आपको बरकत दे। कलवरी की सूली पर आए, अपने हाथों को बुलंद करें। मैं उसे प्यार करता हूँ, से प्यार करता हूँ, क्योंकि उसने पहले मुझसे प्यार किया और मेरी नजात कलवरी पर खरीदी। क्या आप एक अच्छे गीत गाने वाले को सुनना पसंद करेंगे? मैं समझता हूँ कि हम में इंडियानापोलिस की जानिब से एक मुबशराना गीत गाने वाला लीडर मौजूद है, और मेरा यकीन है कि ये भाई कैटल टैबरनेकल में गाता है। क्या ये सच है? ठीक है जनाब, ये इसी जगह कैटल टैबरनेकल में गाते हैं। कितने लोगों को ई हावर्ड कैडल याद है? वो मेरे अजीजो, खुदा उसकी बेशकीमत रूह को सुकून दे। हवा में बोलती हुई कोयल की तरह एक औरत जिसके गीत मैं मोहब्बत से सुनता था, किसी से भी बढ़कर, जिसका गीत मैंने अपनी जिंदगी में सुना है, वो मिसिस कैडल ही थी। वो गाती थी कब इसके के आज सुबह अपने कमरे को छोड़ें। क्या आपने अपने नजात दहिंदा मसीह के नाम में दुआ करने का सोचा? क्या आज वो हमारी डाल है? एक सुबह ठीक उस पार सड़क के एक छोटे से दो कमरों के घर में जो मैंने ले रखा था, मैं जा रहा था आगे बढ़कर आग जलाने के लिए, लेकिन चूल्हा जलता ही नहीं था और मैं उसे जलाने की कोशिश कर रहा था और तेज हवा अंदर आई और उसने चूल्हे को मेरे सामने बुझा दिया। और सर्दी बहुत थी और मैं तकरीबन जमने को था और सर्दी पूरे फर्श पर थी और मैं पांव से भी नंगा था और कोशिश कर रहा था कि ये पुराना टीन से बना पतली नाली वाला चूल्हा जल जाए। और मेडा ने अभी हाल ही में शादी की थी और मैं कोशिश कर रहा था कि वो पुरानी लकड़ियाँ जो कि थोड़ी गीली थी जल जाएं, और आग जलती ही नहीं थी। और मैं वहाँ बैठा हुआ था कि मैंने सोचा, ओ मेरे खुदाया, मैं दोबारा आग जलाने की कोशिश करूँगा। आखिरकार इस पुराने चूल्हे को जलना ही था और मैं वहाँ पहुँचा और उस तरफ मुड़ा, रेडियो पड़ा था और मैंने रेडियो चला दिया और उस औरत ने गाना शुरू किया, कबल इसके के आज सुबह आप अपने कमरे को छोड़ें, क्या आपने दुआ करने का सोचा? और मैं उसी घड़ी फर्श पर दुआ में झुक गया, अपने निजात दहिंदा मसीह के नाम में, क्या आज वो हमारी डाल है? ओ कितनी मोहब्बत से मैं उस औरत को सुनता था। जब कभी मैं दरिया के उस पार जाऊंगा, तो मैं यकीन करता हूँ कि मैं वहाँ मिसिस कैडल को बैठे हुए सुनूंगा। आप जानते हैं, मैंने हमेशा एक इकरार किया है, दरिया के उस तरफ जहाँ सदाबहार दरख्त है, आप जानते हैं, यानी जिंदगी का दरख्त, और दरिया के पार दूसरी तरफ वहाँ फरिश्तों की क्वायर है जो दिन रात गाती है, बल्कि वहाँ रात तो होती ही नहीं, सारा दिन गाते हैं, समझे? और मैं भी उस जगह बैठ जाऊंगा और जरा पीछे बैठकर उसे सुनूंगा, और मेरा यकीन है कि मैं वहाँ पर मिसिस कैडल को भी गाते सुनूंगा। हमारे भाई को खुदा बरकत दे। मैं इस भाई का नाम भूल गया हूँ, क्या नाम है भाई? भाई निक वुलमैन आपके लिए गीत गाएंगे। भाई वुलमैन, आज आपको यहाँ पाकर बड़ी खुशी हुई।